आपका प्रातः क्लास है दो चार 1967 रविवार को रिकॉर्ड चला मुखड़ा देश ले प्राणी जरा दर्पण में देश ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में देश ले दर्पण में कौन सी दर्पण की बात है ज्ञान दर्पण दर्पण माने आरसी मिनी मधुबन को भी दर्पण बोला शीशे का महल जिसमें अपने चेहरे और दूसरों के भी चेहरे दिखाई देते हैं चेहरे माने सीरत सूरत और बड़े से बड़ा दर्पण क्या है बाबा हाँ शिव बाबा ओम शांति ये किसने कहा बाप ने कहा क्या कहा ओम शांति हद के बाप ने कहा या भेद के बाप ने कहा कौन से वेद के बाप ने कहा ओम शांति आ ओ मा माना जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का पाठ समाया हुआ है उसे बाप ने कहा ओम शांति कौन कौन है वेद के बाप है आत्माओं का बाप और मनुष्य शक्ति का बाप तो यहाँ किसने कहा ओम शांति मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा ओम शांति शिव बाप ने नहीं शिव बाप को त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे है कहेंगे फिर त्रिमूर्ति शिव बाप ने कहा ओम शांति या मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा ओम शांति है इधर की पाला कहती मनुष्य शक्ति ने उधर की पाला कहती त्रिमूर्ति शिव ने शिव किसका नाम है आत्माओं के बाप का नाम उसको मूर्ति है ये कौन कहता है मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ है शिव बाप कहते हैं मैं तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ ब्रह्मा की मूर्ति विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, त्रिमूर्ति की यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं। एक का हाउस है या तीन का हाउस है? तीन का, एक का। त्रिमूर्ति रोड बनाते हैं, नाम रखते हैं। रोड माने रास्ता, जिंदगी जीने का रास्ता बताया जाता है ना, तो त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस। हाउस में रहने वाले का नाम के आधार पर कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस। फिर बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव का परिचय दो, किसका परिचय? त्रिमूर्ति शिव का परिचय दो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी किसका परिचय देते हैं? हैं? बिंदी का परिचय देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और इन तीन मूर्तियों के साथ आता है वो ऊपर रखा हुआ बिंदु। वो है त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति शिव रास्ता बताता है तो कहा जाता है त्रिमूर्ति रोड। तो रास्ता बताने वाला एक है, दो है या तीन तीन है? सच्चा रास्ता तो एक होगा या तीन होंगे? तो बताने वाली मूर्ति भी एक होगी या तीन होंगी? है? फिर कौन है? कौन? मनुष्य शक्ति का बाप। शिव बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, और उसमें जुड़ा हुआ है शिव। तो शिव तो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है। जिसको शरीर नहीं होता तो शरीरदारी में प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव बाबा। फिर बोलता है कि जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम देता हूँ ब्रह्म। दादा लेखराज में भी प्रवेश किया तो नाम दिया ब्रह्म, परंतु वो तो 1947 की बात है, और इससे रुद्ध ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन तो उससे पहले ही पड़ गया था। कब पड़ा था? 36 में ही पड़ गया था। नाम था विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं था, ब्रह्मा नाम यज्ञ नहीं था, विष्णु नाम यज्ञ नहीं था, क्या नाम था? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों पड़ा? रौद्र माने भयंकर, सब धारण किया, आदि में मध्य में अंत में कब धारण किया? अंत में धारण किया। जो आदि सो अंत नहीं होता है। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं हुई है? हुई तो इसका मतलब आदि में भी था और अंत में भी है। फिर नाम के साथ लगा हुआ है विशेषण अविनाशी, जैसा रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका विनाश कभी होता ही नहीं है। सत्युग त्रेता में ज्ञान यज्ञ चलता है क्या? है ज्ञान का, ज्ञान का सार होता है। हाँ। सार होता है माने सब कुछ है। और द्वैतवादी द्वापर युग में भी भले द्वैत है फिर भी प्राय लोप होता है। क्या? लेकिन पूरा लोप तो नहीं होता। कलयुग में भी जैसे और धर्म होते हैं तो सत्य सनातन धर्म भी होता है, और इसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म, तो सत्य का कभी लोप होता नहीं। तो जो सत्य है उसके लिए कहावत है कि सच्चाई सार के ऊपर चढ़कर बोलती है, मन विकराल रूप धारण कर लेती है। तो विकराल रूप धारण करने वाले के नाम के ऊपर ज्ञान यज्ञ का नाम रखा गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये रौद्र रूप कौन धारण करता है? तीन मूर्तियों में ब्रह्मा तो धारण नहीं करता, वो तो प्यार ही प्यार बरसाता है। विष्णु भी नहीं, कहते भी हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा को महादेव नहीं कहते, विष्णु को महादेव नहीं कहते, शंकर को कहते हैं महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव। और सब है 33 करोड़ देव और वो है महादेव। तो भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि जो बड़ा बच्चा है उसको बाप का वर्षा मिलता है। और बाप का वर्षा क्या है? वो शिव है, ज्ञान का अकूत भंडार। क्योंकि ज्ञान भी निराकार और आत्माओं का बाप भी निराकार, निराकार के पास निराकार ही वर्षा होगा, साकार के पास साकार ही वर्षा होगा। तो ये निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस साकार में प्रवेश करता है उसका नाम रखता है काम के आधार पर, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। तो नाम बड़ा रुद्र, ये किसका नाम पड़ा? देव तो बाद में बनेगा, पहले तो पहले क्या है, ये आदि में है सो अंत में भी है। तो जिसका नाम पड़ा रुद्र और उसके द्वारा ज्ञान का भी नामकरण हो गया रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो सवाल है कैसा ज्ञान? अविनाशी भी है और रौद्र रूप भी धारण करने वाला है, क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति होनी है। सारी दुनिया माने जो भी इस दुनिया के पुराने धर्म हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने राज्य हैं, जो कुछ भी तामसीपन है वो सारा स्वाहा हो जाना है। क्या बचेगा है? अरे कुछ बचेगा कि सब लोप हो जाएगा है? सत्य बचेगा, बाकी सब सब लोप हो जाएगा। सुजीता ने कहा है ना सत्य विद्यते भावो, सत्य का कभी अभाव होता नहीं इस सृष्टि पर, सत्य सदैव कायम रहता है। जैसे सत्य सनातन धर्म इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है और धर्म लोप हो जाते हैं और धर्मखंड भी लोप हो जाते हैं, ना आदि में थे और ना अंत में रहेंगे। तो एक रहेगा, सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। अनेकों बातें सत्य नहीं हो सकती, एक बात ही सत्य होगी। तो जो सदा सत्य है इस सृष्टि पर कोई है या नहीं है? कौन है? हैं? शिव बाबा। मन क्या कहना चाहते हैं? शिव बाप नहीं, शिव बाप सदा सत्य नहीं। अरे हाँ, साकार सृष्टि में सदा सत्य नहीं, निराकार दुनिया में सदा सत्य। इस साकार दुनिया में भी आता है तो भी निराकारी स्टेज को त्यागता नहीं है, कभी त्यागता है नहीं, वो सदैव कहाँ का रहने वाला है, निराकारी दुनिया का रहने वाला है। साकारी दुनिया में उसकी बुद्धि का लगाव एक सेकंड भी लगता नहीं। तो दुनिया के हिसाब से पक्का सन्यासी कहें या गृहस्थी कहें, संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, सन्यासी माने संपूर्ण त्यागी। क्या संपूर्ण त्यागी है? संपूर्ण किस बात का त्यागी है? देह का त्यागी, देह के संबंधों का त्यागी, देह के पदार्थों का त्यागी। अच्छा, अगर त्यागी है देह का, तो जब इस सृष्टि पर आता है तो देह लेता है या नहीं है? माने दिल हो जाती है कभी दुनिया में भी हद के भी सन्यासी होते हैं ना। तो कोई सन्यासी ऐसा हुआ जो उसे दुनिया में हो लेकिन सदा काल का सन्यासी हो है? तो शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी हो गए, तो 8 वर्ष से पहले तो माता पिता के गृहस्थ में थे ना, तो संपूर्ण त्यागी इस दुनिया साकार में सदा काल का जैसे कोई नहीं हो सकता, वैसे परम धाम में भी, शांति धाम में भी, सोल वर्ल्ड में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा सन्यासी हो, सिवाय एक शिव बाप के। मना देह लेता नहीं है, है? तन धारण नहीं करता, करता है लेकिन विशेषता क्या है, तुरीयत्व क्या है, क्या तुरीयता है? लेता है लेकिन जो तन लेता है उसमें लगाव नहीं लगता। और जितनी भी आत्माएं हो, चाहे बड़े से बड़ा दुनिया का कोई संन्यास, धर्म का ही, धर्म पिता ही क्यों न हो, शंकराचार्य ही क्यों न हो, उनको कुछ न कुछ थोड़े बहुत समय का लगाव लगता है। नहीं लगाव लगे फिर तो उनका गर्भ से जन्म होता ही नहीं। चलो शंकराचार्य की बात छोड़ दो, शंकराचार्य सन्यास धर्म के, वो तो जैसे और धर्म झूठे हैं कि सच्चे हैं, जैसे शंकराचार्य का सन्यास धर्म भी झूठा है, विनाशी है। तो वो कौन है जो स्वयं अविनाशी है, एक है, इस सृष्टि का ही है, ऐसे नहीं परम धाम का है सदाकाल, इस सृष्टि का भी है लेकिन सदा सत्य है, निवृत्त नहीं है कभी। क्या? सदा प्रवृत्ति में रहने वाला है। तो उसके मुकाबले जो सदा प्रवृत्ति में रहने वाला है वो नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तो ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाला एकदम एंटी है या नहीं? 100% है? नहीं है? तो ऊपर वाला नीचे वाले के प्रति आकर्षित होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। ऊंचे वाला है और नीचे वाले के प्रति आकर्षित हो जाता है, हैं? आशिक हो जाता है। जो नीचा है वो आशिक नहीं होता, और वो ऊपर है वो आशिक हो जाता। इसका मतलब है कि जो इस दुनिया का बड़े से बड़ा सन्यासी है, कौन? शिव बाप। वो भी आशिक हो जाता है, खिंचा चला आता है। किसके प्रति है? मनुष्यों के प्रति। देह के प्रति वो स्वयं 100% आत्माभिमानी है ना? 100% आत्माभिमानी होते हुए भी देह के प्रति आकर्षित हो जाता है। क्या सदा आकर्षित हो जाता है या कोई उसका निश्चित टाइम है? इस दुनिया में भी आशित माशुक होते हैं, तो जो आशित होते हैं वो मोस्टली क्या होते ही हैं? पुरुष आशित कौन होते हैं? पुरुष ही आशिक होते हैं। तो जो आशिक होते हैं उनका भी एक टाइम होता है जिंदगी में जब वो आशिक होते हैं। ऐसे नहीं कोई बच्चा जन्म से ही आशिक हो जाता हो, होता है क्या? नहीं। शैशवावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में भी नहीं। उसका एक टाइम निश्चित है। किस बात पर टाइम निश्चित है? हैं? आशिक बनने में जो वो बात कौन सी है कि वो निश्चित टाइम पूरा होता है? वो आधार क्या है? किस चीज का आधार है? हैं? हाँ, जो सत्व है वो दो प्रकार का सत्व है। सत्य जैसे वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि एलिमेंट उसका कभी विनाश होता है, है? एलिमेंट का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे ही आत्मा का भी विनाश नहीं होता। फिर दोनों में अंतर क्या है? हाँ, एलिमेंट है पंचभूतों से कनेक्टेड और आत्मा पंचभूतों से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप पंचभूत से सदैव कनेक्टेड है। यूं कहें कि वो आत्मा एक ऐसी स्टेज भी आती है कि टोटल पत्थर बुद्धि। क्या? टोटल पत्थर बुद्धि। और उसके मुकाबले जो ऊपर वाला है तो वो भी आत्मा, लेकिन वो टोटल पार से उसकी भेंट नहीं की जा सकती। वो सदा चैतन्य है, है? और नीचे वाला सदा चैतन्य नहीं, कहेंगे जट बुद्धि। किस बात में जट बुद्धि है? अरे इसने हंसने की कोई बात पूछा, किस बात में जट बुद्धि है? हाँ, रट गया अमृत छोड़ निशताहे को खा गए। कितने प्यार से बोलते हैं बाबा, अरे लल्ला अमृत छोड़ विषताए को खावे, भाषा है ना। तो भी मानने वाला नहीं। तो गीता में लिखा है इदम शरीरम, ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत माने क्षेत्र। किस बात का क्षेत्र? युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है कर्म क्षेत्र है। और जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में मूल क्षेत्र यही है। जैसे यज्ञ कुंड होता है, स्थान है ना, स्थान का नाम है ना यज्ञ कुंड। वो दुनिया में तो स्थूल यज्ञ कुंड होते हैं, और ये है ज्ञान यज्ञ कुंड। ये भी क्षेत्र है लेकिन चैतन्य है, ये जड़ है। चैतन्य यज्ञ कुंड है। क्या होना है इस यज्ञ कुंड में? सारी दुनिया को स्वाहा होना है। जो पहले स्वाहा हो जाए वो फायदे में, या जो बाद में स्वाहा हो वो फायदे में है? पहले स्वाहा हो जाए तो फायदे में, कहीं में स्वाहा हो जाए जिसमें आग जल रही है यज्ञ कुंड में है? यज्ञ कुंड में क्या होता है? आग जलती, वो तो जड़ है। भक्ति मार्ग में जो यज्ञ कुंड बनाते हैं वो कैसा है? जड़ है। और इधर हैं? ये चैतन्य है। ये बाबू योग अग्नि तो यज्ञ कुंड थोड़ी है, योग अग्नि तो अग्नि का नाम है। क्या? जैसे कुंड दो प्रकार के, चैतन्य और जड़, ऐसे ही अग्नि भी दो प्रकार की। एक अग्नि है जो आज सारे संसार में हर मनुष्य मात्र, हर प्राणी मात्र के अंदर जल रही है। क्या? कामाग्नि। और दूसरी उसको शांत करने के लिए योगाग्नि। तो जो योगाग्नि है वो आदमी इस सृष्टि में या अंत में प्रज्वलित होती है। है? है? योग तो तभी कहे जाएगा जब एक और ये दो और दोनों का मेल हो, तो कहा जाएगा योग, है ना? और दोनों का मेल तब हो जब आकर्षण एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति हो, और परिपूर्ण आकर्षण जब होगा, जैसे कोई लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ घर्षण की जाती है तो क्या निकलता है? आग निकलती है। तो ऐसे भी ये योग है, एक दूसरे ने एक दूसरे को पहचाना और पहचानने के बाद एक दूसरे से मेल करने का, स्वभाव का, संस्कार का, हर प्रकार से मिलकर के एक हो जाए। जैसे शिव और शंकर मिलकर के एक हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग, अलग ना होते तो शंकर शिव भी कहा जाता, सुतो को भी कहा नहीं जाता है। हमेशा शिव पहले और शंकर बाद में। क्यों? क्योंकि पावरफुल जो ऊंची शक्ति है वो पहले अपना स्थान ले लेती है, तो शिव पहले और शंकर बाद में। क्योंकि शंकर है पुरुषार्थी। क्या? शंकर है पुरुषार्थी और शिव, शिव पुरुषार्थ कराने वाला, कराने वाला है तो करने वाला भी होगा। करण करावन हर दोनों होगा कि एक होगा? है? साकार है। अच्छा, वो करता नहीं है, वो करता नहीं है, अकर्ता है। कौन? ऊपर वाला अकर्ता है, नीचे वाला करता भी है, है कराता भी है। करण करावन हार है, तो जो करण करावन हार है वो कब है? करण करावन हार आदि में या अंत में या मध्य में? हैं? अंत में, जब योग की सिद्धि हो जाए या कहें पुरुषार्थ संपन्न हो जाए तब है करावनहार। और इससे पहले करणहार। तो पहले योग है या पहले ज्ञान? पहले ज्ञान, जानकारी माना। योग बड़ी बात नहीं है, है? गीता में लिखा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। विद्वान जन है वो योग को और सांख्य, सांख्य माने सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात विस्तार पूर्वक बताई जाए उसको कहते हैं सांख्य। माने सूक्ष्म का विस्तार कर दिया जाए, और जब संपूर्ण विस्तार होता है वृक्ष का तो उसमें से क्या निकल आता है? बीज निकल आता है। बीज जब पक जाता है तो वृक्ष से डिटैच हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य शक्ति का बीज बाप है। क्या? जब ये ज्ञान में पक जाता है तो क्या होता है? है जो प्रवृत्ति में था, क्या प्रकष्ट अत्यंत तीव्रता पूर्वक प्रकष्ट व्यक्त, व्यक्त माने बोला। जैसे शिव के मंदिर में शिवलिंग और जलाधारी दोनों का वृत्त दिखाते हैं, क्या मेल दिखाते हैं ना, स्त्री पुरुष का मेल दिखाते हैं, माता पिता का, तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति। तो ये जो प्रवृत्ति है, जब शिव की शंकर के साथ या शंकर की शिव के साथ पक्की प्रवृत्ति हो जाती है, पक्का योग लग जाता है, लगाव लग जाता है, अटैचमेंट 100% एक तरफ हो जाता है, किस तरफ? शिव की तरफ हो जाता है, तो बाकी सबसे डिटैच हो जाता है। अगर सबसे डिटैच हो जाता है तो किसी से ममता मोह तो रहा नहीं है, रहा नहीं। तो जब कोई से डिटैच, वो अटैचमेंट नहीं है, तो जैसे शिव का कोई से अटैचमेंट नहीं है, वो तो सदा निराकार, और वो सदा साकार, तो उसका अटैचमेंट किसी से रहता है, है? नहीं रहता, नहीं रहता, है? कोई दूसरी आत्मा के शरीर से अटैचमेंट रहता है? नहीं रहता। तो जब किसी दूसरी आत्मा के पंच तत्वों से बने शरीर से अटैचमेंट नहीं रहता, एक शिव से अटैचमेंट होता है, तो वो शिव समान हो गया क्या? है? शिव समान हुआ या नहीं हुआ? शिव समान हो गया, शिव को तो अपना शरीर ही नहीं है, शिव को अपना शरीर है, है? अगर शिव को अपना शरीर हो तो उसकी यादगार भी होती दुनिया में। जैसे शाक्त की याद है सोमनाथ मंदिर में, क्या हर चीज शुरुआत में सात्विक होती है ना, तो द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो शिवलिंग भी सात्विक यादगार में सोमनाथ मंदिर में था ना, तो सिर्फ बिंदु था क्या, क्या था, लिंग भी तो था और उसको लिंग होता नहीं, होता है तो मुरली में ब्रह्म वाक्य में ये किसने कहा मेरे लिंग की ही पूजा होती है, है? है? अपनेपन से कहा कि मेरा अपना एक ही है, जैसे वो नीचे वाला मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अरे तो फिर तुम बाबा क्यों कहते हो, है? बाबा तो साकार निराकार का मेल बताया तो परिहार कर दिया मुरली में, तो तेरे लिए बाबा कहने से तेरे लिए छूट है, इसके लिए जरूरत नहीं है कि कोई साकार भी हो निराकार के साथ तभी तू उसे बाबा कहे, तेरे लिए बाबा कहने से बिल्ली ही याद आती है, माने तेरे लिए एक के लिए बिल्ली ही बाबा है, क्या है, बिल्ली ही बाबा है। तो क्या बिंदी से योग लगाता है, है? जो बिंदी है वो बिंदी स्वयं आत्मा है कि नहीं, जो स्वयं बिंदु है वो बिंदी से योग लगाता है, है? अरे जैसे बिजली के दो तार हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का मेल होता है तभी तो करंट आता है, नहीं है तभी कुछ खर तेल निकलेगा, नहीं तो थोड़े निकलेगा। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो शिव समान ज्योतिबिंदु तो बनता है, फिर भी कुछ उसके मुकाबले अंतर रहता है या नहीं रहता है, क्या है? वो भी तो इंद्रिय वाले में ही प्रवेश करता है, वो जब आता है तो इंद्रियों वाले शरीर में ही तो आता है, है? हाँ वो अपन अपन नहीं है, शरीर में आता है लेकिन शरीर उसका अपना नहीं है, और वो नीचे वाले का अपना शरीर है लेकिन शरीर में लगाव लगाव नहीं रहता। जब संपूर्ण योगी हो जाता है तो देह में लगाव नहीं रहता, भले दबाव नहीं रहता फिर भी सार रूप में देह रहती है या नहीं रहती, पांच तत्वों का सार उस आत्मा के साथ सदैव ही रहता है, क्या? या वो आत्मा परम धाम वासी हो जाती है, नहीं? परम धाम वासी नहीं होती लेकिन परम धाम की स्टेज को यहाँ इसी सृष्टि पर अपने ही अंदर उतार लेती। उसका वो शरीर जो है, जो लिंग के रूप में पूजा जाता है, दुनिया भूल जाती है कि वो आत्मा भी है। पत्थर को ही लिंग बना करके याद करते हैं। द्वापर में तो सोने का भी बनाते थे, चांदी का भी बनाते थे, कॉपर का भी बनाते थे, बाद में फिर कलयुग में आकर के लोहे का या पत्थर जैसा बनाने लगे। इस बात की यादगार है कि वो जो लिंग रूप है, वो चार अवस्थाओं से पसार होती है आत्मा। सत्व प्रधान सतयुग, सोने का लिंग, सत्व सामान्य रजत, चांदी का लिंग त्रेता में, और द्वापर में तांबे का लिंग, और कलयुग में लोहे का कहो काला या पत्थर का कहो। अब उसमें जोर से आग जलाई जाए, क्या पत्थर को धीमी आग में डाल दो तो क्या है? आग बन जाएगा है? नहीं बनेगा। क्या करना पड़ता है? तीव्र अग्नि में डाला जाता। तो जैसे आग है, वैसे ही वो भी लाल लाल क्या बन जाता? अंगारा बन जाता। संग के रंग से क्या बन जाता? क्या बन जाता? अंगारा बन जाता। देखा संग का रंग है? संग के रंग से क्या होता है? है ऐसा परिवर्तन हो जाता है। जान तो तुम ही हुई जाए। तो संपूर्ण योग कब लगता है? संपूर्ण योग लगे उसका राज क्या है? है संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण ज्ञानकारी होगी तो संपूर्ण योग लगेगा, और संपूर्ण ज्ञानकारी नहीं होगी तो संपूर्ण योग भी नहीं लगेगा। और संपूर्ण योग नहीं लगेगा तो पाप भी पूरे भस्म नहीं होंगे, और पाप पूरे भस्म नहीं होंगे, कुछ न कुछ रह जाएंगे तो जन्म भी कम मिलेंगे। जन्म कम मिलेंगे इसका मतलब है षष्ठी रूपी रंगमंच पर हम ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकेंगे। ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकेंगे तो इस षष्ठी के 100% अनुभवी बन सकेंगे? है 100% अनुभवी भी नहीं बन सकेंगे। और वो किसमें आता है? अनुभवी रथ में, माने 50% भी हो तो चलेगा ना? नहीं, 100% अनुभवी तन में आता है, एक जन्म का अनुभवी नहीं। कितने जन्म का? 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला। क्रॉस करने वाला या सिर्फ 84? 84 जन्मों को भी क्रॉस करने वाला, क्योंकि वो 84 जन्मों को क्रॉस करता है। जब तक न क्रॉस करे तब तक वो त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता। उसकी त्रिकालदर्शी बनने का आधार कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का वो हीरो पार्ट धारी बीज रूप बाप, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल को क्रॉस करके पार्ट बजाता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को क्रॉस कर जाता है। उसके क्रॉस करने के आधार पर है उसका अनुभव, क्या त्रिकालदर्शी बनने का, त्रिकालदर्शित्व का जो पावर है, त्रिकालदर्शी पने की पावर है या नहीं है? परिपूर्ण पावर है, अखूट पावर। लेकिन वो कब आती है? जब इस मनुष्य सृष्टि का साकार बीज रूप बाप तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है, उसमें वो पावर आती है। दोनों का कनेक्शन है कि नहीं है? पूर्व कल्प से कनेक्शन है ना, ऐसे ही दुनिया में भी है। जो माता पिता बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, साजन सजनी बनते हैं, उनका पूर्व जन्मों से कनेक्शन है, हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। उधर वो स्टेज को प्राप्त होती है, उधर उसमें भी वो पावर आती है। तो इस दुनिया का कोई ऐसा सन्यासी नहीं है जो उस पावर को जीवन भर धारण कर सके है? है कोई? कोई पुरुष मात्र नहीं है जिसने वो सत्व की स्थूल शक्ति किशोरावस्था के बाद जो आती है नौजवान होने पर, उस शक्ति को जीवन भर धारण कर सके। बेबी बेबी कैसा है? वो आत्माओं का बाप है, उसमें भी वो त्रिकालदर्शिता की जो शक्ति है, अखूट शक्ति, वो शक्ति जब परिपक्व स्टेज को प्राप्त होती है, उसे कब प्राप्त होती है वो तो जान लिया नहीं? जान लिया तो जब प्राप्त होती है तो उसको तलक हो जाती है। ऐसे ब्रह्मवाद की मुरली में भी बोला है, मुझे तलक हो जाती है, मैं ठहर नहीं सकता, जाऊं। और वो खिंचा चला आता है किशोर, आत्मा की ओर खींचता है, कि शरीर की ओर खींचता है? वो आत्मा तो स्वयं ही है, है? आत्मा स्वयं नहीं है, आत्मा जेंट्स या फीमेल? आत्मा तो पुरुष ही है, जेंट्स है। तो जेंट्स क्या जेंट्स की ओर आकर्षित होगा? ये तो वो होता है दुनिया में, जैसे युद्ध होते हैं, मजबूरी हालत में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है, तो घोड़ों को खा फाड़ के खा जाते हैं। या उड़ीसा जैसे गरीब देश में कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो क्या करें, भूख की वजह से बच्चों को ही काट के खा जाते हैं। वो तो मजबूरी की बात, वो अलग, कभी कभी कहीं कहीं, हमेशा नहीं ऐसा देखने में आता। तो वो तो है ही जेंट्स, तो आत्मा के ऊपर आकर्षित होता है। आत्मा जेंट्स के प्रजापिता की जो आत्मा है उस आत्मा की तरफ जेंट्स के ऊपर आकर्षित होता है या उसके तन की ओर आकर्षित होता है। जैसे दुनिया में भी पुरुष होते हैं, हैं तो आत्मा ना। पुरुष जिस कन्या या माता पर आकर्षित होते हैं तो वो आत्मा है ना, आत्मा पर आकर्षित नहीं होते। कहीं तो आ सकते है, देह के ऊपर आकर्षित होते। तो कोई लकटा हो, काना हो, बूंचा हो, लंगड़ा हो, है तो आत्मा ना। तो कोई सुंदर शरीर वाली के ऊपर आकर्षित होगा है? नहीं आकर्षित होगा, शायद अंदर अंदर आकर्षित होता रहे उसे पता न चले, नहीं आकर्षित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से है, मेल नहीं मिलेगा। तो मेल मिलाया जाता है। दुनिया में भी बच्चों की शादी करते हैं तो क्या करते हैं, क्या देखते हैं खास है? तो कुंडली तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब से, भाग्य सदभाग्य के हिसाब से देखते हैं, लेकिन कुछ शरीर का भी समानता देखते हैं या नहीं देखते हैं? गरीबी अमीरी का भी देखते हैं या नहीं देखते हैं? हैं? देखते हैं। तो ऐसे ही वो आता है निराकार, जिसके पास अपना साकार शरीर नहीं है, तो वो साकार शरीर देह के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए वो देह लेता है, आत्मा को कैप्चर नहीं करता। मना कोई भी आत्मा को अधीन नहीं करता, आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ता है। क्या गीता में अर्जुन को कंपलसरी किया कि तू मेरी बात मान ही मान? नहीं, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दे। तो देह के ऊपर आकर्षित हुआ, जो स्वयं उसके पास नहीं है, है ना? और साहूकार होगा तो बढ़िया फर्नीचर, बेस कीमती आलीशान, और गरीब होगा तो ऐसे ही खूंटी फूटी लेके बैठ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जैसे दुनिया में ऐसे ही होता है। धर्म पिताएं आते हैं, आत्मलोक से आते हैं, जिस लोक से आते हैं वहां पाप का नाम निशान है ही नहीं। इस दुनिया में आते हैं तो गर्भ से तो जन्म नहीं ले सकते, गर्भ से तो जन्म लेने से पाप भोगने पड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया। ऐसे ही जो भी धर्म पिता ऊपर से आएगा, जितनी अनुभवी सच रूपी रंगमंच की अनुभवी आत्मा होगी उतनी ही श्रेष्ठ आत्मा में प्रवेश करेगा या कोई भी लिंगम पुण्य में प्रवेश कर जाएगा, तो हिसाब बन जाता है। मुरली के ब्रह्म वाक्यों के आधार पर ये नियम बन जाता है। अव्वल नंबर धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन जो मुसलमानों में कहा जाता है वो अव्वल नंबर में आता है। क्या अव्वल नंबर देहधारी में आता है? इसकी देह पांच तत्वों का सार स्वरूप अव्वल नंबर हो, उसके बाद जो भी धर्म पिताएं आएंगे वो सब नंबरवार देहधारियों में आएंगे। जैसे सतयुग में आठ नारायण होते हैं, क्या होते हैं ना, तो उनका हिसाब बना हुआ है। पहला जो नारायण है सतयुग का, पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी के नारायण को कौन कैप्चर करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? है? अरे बाप रचेता है ना, है? बाप रचेता है और बच्चा रचना है, तो रचना रचयिता के कंट्रोल में होती है ना, हैं? इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है कि रचयिता के कंट्रोल में अगर रचना नहीं है तो वो रचना नहीं है। तो जो मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता कृष्ण है, जो जलमयी सागर में पहले पहले जन्म लेते हुए दिखाया गया पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से पड़ा हुआ है, पहला जन्म लेता है ना, पहला पत्ता है ना मनुष्य शक्ति का, तो उसका कंट्रोलर कौन है, उसका जन्मदाता कौन है, उसका बाप कौन है, उसका रचयिता कौन है, राम वाली आत्मा। तो फर्स्ट नारायण और उसको कंट्रोल करने वाला है नारायण, तो देवता होता है, देवता को देवता बनाने वाला कौन है, भगवान भगवती। तो वो भगवान भगवती शंकर पार्वती जी ने कहा जाता है वे ऊंच से ऊंच रचयिता और उनकी ऊंच से ऊंच रचना। संगम युग में ब्रह्मा हो गई ऊंच से ऊंच रचना माता के रूप में, और शंकर हो गया ऊंच से ऊंच रचयिता, जिसका प्रतिफल आता है कि सतयुग की पहली पीढ़ी में कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बनती है और वो बाप बनता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का धर्म पिता जो द्वापर में आता है इब्राहिम, वो अपना जो आधार बनाएगा जिस पर आकर सवार होगा, जिसको अपनी बन्नी बनाएगा, सगनी बनाएगा, इस्लाम धर्म की रचना रचने के लिए, इस्लाम धर्म का परिवार बनाने के लिए, तो सतयुग के पहले नंबर को नारायण, पहले नंबर नारायण को आधार बना सकता है या नहीं बना सकता है? क्यों है? हाँ, उसको कैप्चर नहीं कर सकता। उसके बाद जो नारायण बनेगा, कृष्ण का बच्चा, नारायण का बच्चा, सेकंड पीढ़ी का नारायण, उसमें सेकंड नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता, ऐसे ही नंबर वार। नौ नारायण है तो नौ नारायण में नौ प्रकार के धर्म पिताएं हैं वो टाइम टू टाइम प्रवेश करते हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये हिसाब बन गया क्या आधार का और आधेय का। सेवा पाते हैं तो उनका फर्नीचर सबसे बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है होना चाहिए। तो अव्वल नंबर का फर्नीचर तो शिव बाप लेते हैं। कोई तो वो अव्वल नंबर कैसे? अरे मुसलमान लोग भी मानते हैं अल्लाह अव्वल दिन है। अव्वल नंबर का पिता तो वही है। अव्वल नंबर का मतलब उसका कोई पिता है ही नहीं, लेकिन वो निराकार है। क्या है? निराकार है। मनुष्य सृष्टि में पिता साकार चाहिए या सिर्फ निराकार चाहिए? साकार चाहिए। तो वो निराकार साकार में भी आता है। जिस साकार में आता है उसकी देह को ऊपर आकर्षित होता है या आत्मा के ऊपर आकर्षित होता है? है? तो दुनिया में भी ऐसे ही है। मनुष्य हो या कोई भी पशु हो या पक्षी हो कीड़ा मकोड़ा हो प्राणी मात्र हो वो मेल है तो किसके ऊपर आकर्षित होता है? फीमेल के ऊपर आकर्षित होता है। फीमेल में क्या खासियत होती है? अरे वही नाक वही आंख वही कान सब कुछ तो वही है। हैं? है जो धारण करने की शक्ति है उसमें अंतर क्या है उसमें और उसमें? उसकी शक्ति में और उसकी शक्ति में क्या अंतर है? है कोई कोई माता की बुद्धि चकराई तो नहीं रही? उसकी शक्ति में और जिसने प्रवेश किया उसकी शक्ति में कोई खास अंतर है क्या? है उसका क्या नहीं होगा? माने वो जिसमें आता है और जिसको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है वो विष्णु नहीं बनता है? पहले जन्म में विष्णु बनता है या नहीं बनता? तो आदि सो अंत क्या अंतिम जन्म में पति पत्नी में एक दूसरे में झगड़ा होता है? है आदि में भी विष्णु तो अंत में भी विष्णु झगड़ा तो नहीं हुआ? फिर ज्ञान की धारणा ही ज्ञान की ही तो धारणा होती है। अंतर ये है कि उसमें देह का सार भी नहीं है और जिसमें आता है उसमें देह का सार है। मैंने देहभान है जिसमें आता है उसमें उसके मुकाबले क्या स्पेशलिटी है? देहभान है भले सार रूप में है लेकिन है जरूर सूक्ष्म है या विस्तार में है? सूक्ष्म में। ज्यादा ताकत किसमें होती है?
है सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, तो अति सूक्ष्म देह बहन है। इसलिए आकर्षित होता है, माना पुरुष मात्र जितने भी होंगे उनकी ये विशेषता है कि वो आत्मा को नहीं देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, देह की सुंदरता को प्रेफरेंस देते हैं, देते हैं या नहीं है? दुनिया में जितने भी राजाएं हुए हैं, यथा राजा तथा प्रजा होती है, राजाओं ने कोई काली कलूटी खोची बोची नकटी कानी कोटी लंगड़ी लूली को महारानी बनाया, रानी बनाया क्यों है? कि पुरुष जो है वो देह की सुंदरता को देखता है, ऐसे ही है ना, हिस्ट्री में क्या है, है? और देह की सुंदरता जो इस जन्म में स्त्री जाति को मिलती है, कन्याओं माताओं को मिलती है, उसका आधार क्या है? हाँ, पूर्व जन्म में उन्होंने देह को सही तरीके से सुरक्षित करके रखा है, क्या जिन कन्याओं माताओं ने पूर्व जन्म में देह को अच्छी तरह से पवित्र बना के रखा है, तो उनको इस जन्म में भी शरीर सुंदर मिलता है। बेकदरती है तो शरीर सुंदर नहीं मिलता है, या कोई ने आंख से बहुत विकर्म कर दिया, करती है ना, सुपन खाए पुतन है, तो या तो अंधी पैदा हो जाएंगी या तो पानी पैदा हो जाएंगी, तो वो उनको जैसे ऊपर से प्राकृतिक तरीके से दंड मिल गया, माने आत्मा के कर्मों का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर पड़ता है। तो अंतिम जन्म में आकर के मनुष्य सृष्टि का बाप है तो आत्मा चैतन्य, लेकिन भावना के आधार पर किसी में भाव नहीं रहता, इस संसार की किसी मनुष्य आत्मा में भावना नहीं रहती, इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली ने बोल दिया भारत इस समय पूरा नास्तिक, नास्तिक माने कोई परास्ता नहीं, सब झूठे होते दिखाई देने लग पड़ते हैं, एक भी सच्चा नहीं, तो उसका अनुभव सच्चा या झूठा है, सच्चा अनुभव होता है क्योंकि वो अनुभवी से लेता है, और प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही होता है, क्या जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि माया किसी को छोड़ती नहीं, माया माने है, मां माने नहीं, आया माने आया, क्या जिंदगी में ये ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन आ जाती, किसी को नहीं छोड़ती। और नॉर्थ इंडिया की तो माताएं आज तक भी गीत गाती, पता नहीं उनको अंदर कहां से ये टचिंग हो जाती, क्या माया नगरिया मारी गई, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की मार नहीं पाई, मार नहीं पाई, ताकत तो बहुत लगाई लेकिन फिर भी दाढ़ी तो हिलाई दी।
तो जो कमजोरी है वो सारी मनुष्य सृष्टि मात्र में कमजोरी फैली जाती है। कलयुग के अंत में एक आत्मा है जो सबसे जास्ती कमजोर बन जाती है। क्या सभी आत्माओं के मुकाबले, मनुष्य आत्माओं के मुकाबले पावरफुल या कमजोर किस बात में है? किस बात में कमजोर है? अरे बार में भूल जाते हैं, हमने छोड़ दुखता ही को खावे। माने पुरुषार्थी जीवन से पहले वे इतनी कमजोर कि अपनी कमजोरी को त्याग ही नहीं सकती किसी कीमत पर, और जब से बाप को पहचानती है तब से परिवर्तन ही परिवर्तन होगा या लोगों को प्रगति रहेगी है, परिवर्तन ही होता जाता है। सीढ़ी ऊपर ही चढ़ेगी याद में या नीचे भी उतरेगी, ऊपर ही चढ़ती है। चढ़ती कला निशानी क्या बताई चढ़ती कला की? माना है वो नहीं, वो तो अंत की बात, वो झूठी बात। हाँ ये निशानी देखने में आएगी पुरुषार्थी जीवन में कि वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकती। किस बात में भला होता है दूसरों का? लड्डू थोड़ा खिलाने से, रोटी कपड़ा और मकान देने से भला हो जाता है, है? अगर रोटी कपड़ा और मकान देने से भला हो जाता तो आज की गवर्नमेंट कितने मकान बना के दे रही है। भला होता है नहीं? हम मकान बेच देते हैं, शराब पीने लग पड़ते हैं, कितनों को बैंक का ढेर सारा लोन दिया जाता है धंधा करो, और सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, वो शराबी कबाबी बन जाते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान दे करके भला करने से किसी का भला नहीं होता। काहे से होता है? एक चीज ज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी तो ज्ञान ही है ना, अधूरा ज्ञान है। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो महाकाली भी देती है, नहीं देती है? फिर है योग बल देती है, है? हाँ वो चीज नहीं देती महाकाली जो बाप देता है।
लक्ष्मी क्या देती है?
लक्ष्मी वही चीज देती है जो बाप ने दिया, और बाप के प्रैक्टिकल रूप ने दिया। बाप का प्रैक्टिकल रूप क्या है? सो बाप तो कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूं, अखूत ज्ञान का त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, माने प्रैक्टिकल में नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी नंबर वार तुम बच्चे हो। तो लक्ष्मी कौन सा ज्ञान देती है? हैं? हाँ। नारायण से जो ज्ञान मिलता है प्रैक्टिकल बाप का प्रैक्टिकल रूप, शिव बाप का भी प्रैक्टिकल जो रूप है नारायण, उस नारायण से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान संसार को देती है, बाकी कुछ भी सर्वकामनाएं पूरी नहीं करती है। सर्वकामनाओं में क्या क्या आ जाता है? अच्छी बुरी सब कामनाएं आ जाती, वो कौन पूरी करती? जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है, कैसी महाकाली? महाकाली माने है, महाकाली माने क्या? काले कर्म करने वाली। क्या माना? काले कर्म करने वाली काले कपड़े पहनती है, ब्रह्मा कुमारी है सफेद कपड़े पहनती है, तो वो तो महाकाली नहीं हो सकती, नहीं ना? है? ये कपड़े की बात नहीं है। कौन से कपड़े की बात है? शरीर रूपी कपड़े की बात है, इसलिए महाकाली का शरीर ही काला दिखाया जाता है। और शरीर में भी वो अंग जिससे जाति विविचारिणी बनती है, वो अंग भगवान की भुजाएं काट करके और उस अंग को आच्छादित करती है, छुपाती है। माने भगवान की जिन भुजाओं को और चैतन्य भुजाओं को काट लिया, अनिश्चय बुद्धि बना दिया, वो अनिश्चय बुद्धि बनी हुई भुजाएं उसकी कमजोरी को संसार में छुपा देती है। उसकी यादगार चित्रकार ने दिखाई है। पहले चित्र बने हैं या पहले शास्त्र बने हैं? पहले चित्र बने। गुफाओं में मूर्तियां बनी थी, पहाड़ों की गुफाओं में पत्थरों में पक्षी कारी करके ये सारा दिखाया, उसको देख करके फिर शास्त्रकारों ने शास्त्र बनाए। तो तेरे बहाने सर्व का भला, मना सर्व का भला चढ़ती कला को दिखाने वाला है, मना जो आत्मा सर्व का भला करने में लगी हुई है वो तो क्या देखने में आएगा? है कलाएं कहा? शंकर की कलाएं पुरुषार्थ जीवन में अमृत छोड़ दुख काये को खाए, अंत तक अमृत लेता ही नहीं, खाता ही नहीं, इंद्रियों से विष ही विष पीता है, तो इसकी कलाएं बढ़ रही हैं। कलाहीन सीधा कला संपूर्ण नारायण है, कला ही 14 कला का राम भी नहीं बन पाता। तो टोटल कलाहीन बन जाता है, तो क्या वो सर्व का भला नहीं करता? अरे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, तो सर्व का भला करता है या नहीं करता है? करता है। किस आधार पर है? संपन्न बनने के आधार पर। तो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनेगा, फिर तो बैल के ऊपर सवार हो जाएगा। पर सारथी जीवन में बैल उस पर सवार होकर के बैलबाजी कराता है या वो खुद करता है? है बैल कराता है, बैल का पार्टी किसका है शिव के मंदिर में है? वो तो ब्रह्मा वाली आत्मा का है। ब्रह्मा वाली आत्मा जलाधारी के जो नाली के रूप में दिखाया जाता है उसकी तरफ मुंह की है बैठी है। क्या तुम बच्चों का मुख है? सन्मुख, सत माने सत्य, मुख माने मुख, सत्य के सामने तुम्हारा मुख है। माना सत्य ज्ञान सुनने के लिए तुम लालायित रहते हो, और वो आत्मा किस बात के लिए लालायित रहती है? हैं? हाँ, विष पीने के लिए। देखने ही नहीं आती क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी है वो। सूक्ष्म शरीरधारी बैल का पार्ट बजाने वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करती है, जिसको कैप्चर किए हुए है, उससे ऐसा कर्म कराती है। अब सभी रुद्रमाला के मणकों में कोई न कोई सोल दूसरे धर्म की प्रवेश जरूर करती है। नहीं पता? पता है या नहीं है? अनुभव है, कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या ज्ञान कितना भी बुद्धि में चलता रहता है कि ये सच्चाई है, ये ही करना है, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी हो जाता है। तो जिस आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है कुट कुट के, वो आत्मा करती है वो काम, या कोई दूसरी आत्मा उसको जबरियन करा लेती है? हैं? जबरियन करा लेती है। इसलिए उनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए हैं। कैसे मणके? रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख। क्या रुद्र माने? रौद्र रूप जिसने धारण किया। क्या एक एक की कमजोरियों को देख लिया, जान लिया, परख लिया सब धोखेबाज। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चा होना चाहिए। यदि कलयुग के अंत में हायरी विडम्बना माया किसी को छोड़ती नहीं, आज्ञाकारी की जगह सब अनुभव करते हैं, खासकर रुद्रमाला के मणके। हम आज्ञाकारी हैं या अवज्ञाकारी हैं? अनुभव करते हैं, अंदर से समझते हैं कि हम हैं अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी नहीं बाप के संबंध में, पत्नी के संबंध में, सजनी के संबंध में, बाबा के साथ वफादार नहीं। कैसे नहीं है वफादार? किसे कहा जाता है? जो संबंध जोड़ने के बाद जिसे कहते हैं कम से कम भगवान के भांति बने परिवार के, तो 16,000 की लिस्ट में तो आने वाले होने चाहिए है? नहीं, थर्ड क्लास माला में तो होने चाहिए, वो भी नहीं। जो गुप्त संबंध है संसार में मनुष्य मात्र के लिए, वो कौन सा है? पति और पत्नी का जो इंद्रियों का संबंध है वो गुप्त रखा जाता है। उससे वो गोप या गोपी शब्द शुरू हुआ सृष्टि के आदिकाल से। तो उस गुप्त संबंध को अपने जो मित्र होते हैं ना, उनके सामने भी व्यक्त कर देते, छुपा के नहीं रख सकते। क्या कि भगवान के साथ हमारा दृष्टि से ऐसा संबंध हुआ, ऐसी भावना हमारी दृष्टि में थी। कैसी? पति पत्नी की, कि इस जन्म में तो भले हम माता हैं, बांधे लिए हैं, लेकिन अगले जन्म में कहीं न कहीं हमें बाबा के साथ ऐसा संबंध मिले। और वो दृष्टि जब लेते थे तो दृष्टि में जब बच्चे का भाव आने की बजाय क्या भाव आ गया है?
पत्नी का भाव आ गया। जबकि जानते हैं ज्ञान में कि ये जो आत्मा सामने बैठी है साकार में, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, उसका 63 जन्मों का हिसाब और 34 जन्मों का हिसाब विशेष किसके साथ है? पार्वती के साथ है। पार लगाने वाली तो पार्वती कहा जाता है। पार लगाने वाली आत्मा या पार लगाने वाला शरीर है, विशेष में कहेंगे आत्मा। लेकिन क्या शरीर का संग का रंग नहीं होता? तो शरीर को नहीं कहेंगे पार लगाने वाला, शरीर नहीं कहेंगे। इसलिए जो महालक्ष्मी का रूप है वो दो आत्माओं के मेल का रूप है और दोनों ही पार्वती हैं, एक जगदम्बा और एक भारत माता लक्ष्मी। लक्ष्मी है जैसे आत्मा, क्या है? आत्मा बुद्धि, बुद्धि की देवी। और जो जगदम्बा है सरस्वती, वो है वाक देवी, वाचा की देवी। जितने भी धर्म हैं भारतीय धर्म, उनमें कौन सा धर्म पंथ है, धर्म का इबादत स्थल जहाँ वाणी लगातार चलती रहती है मेरे द्वारा? तो वाचा की देवी की सबसे जास्ती मान्यता कौन से धर्म में? गुरुद्वारे में। बड़ी से बड़ी मान्यता क्या है पता है? वो तो सभी नारियों के लिए है, सभी पुरुषों के लिए है, लेकिन खास जगदम्बा के लिए है। राज करेगा खालसा, क्या वाचा की शक्ति है, मन बुद्धि आत्मा की शक्ति नहीं है, वाचा की है। फिर भी इतनी पावरफुल कि वाचा की शक्ति के आधार पर सारी दुनिया में राज करेगी। क्या इस बात का क्लेरिफिकेशन तुलसीदास ने और ज्यादा अच्छा कर दिया। कलयुग के अंत में महाकाली होती है, सृष्टि के मध्य में होती है या आदि में होती है? तामसी युग में होती है। तो तामसी युग में कलयुग के मध्यांत में तुलसीदास हुए और उन्होंने रामायण में लिख दिया, पंडित सोई जेई गाल बजावा। क्या इसे तामसी कलयुग की दुनिया में विद्वान पंडित होशियार कौन माना जाता है? जो बहुत गाल बजाए सो बड़ा पंडित, बड़ा होशियार, बड़ा विद्वान, बड़ा पावरफुल माना जाता है। इस बात का कोई प्रूफ है? है गुरु लोग भाषण देते हैं। गुरु लोगों को तो आसाराम बापू को जी जेल में डाला हुआ है, है? राम रहीम को क्या हालत हो रही है? गुरु लोग नहीं है, है? गुरु की बात नहीं है, गुरुओं की तो दुर्गति कर देते हैं। कब है? कलयुग के अंत में। कभी जो अंत के जो राजाएं होते हैं जिन्होंने राजयोग से
अंतकालीन पुरुषार्थी संगम युग में राजाई का थोड़ा सा लकवा ले लिया है? है? हाँ नेता है, दुनिया के सभी नेता है। कौन सी ताकत है उनके अंदर जिस है? वाइब्रेशन की ताकत, माने शिव बाबा में वाइब्रेशन की ताकत नहीं है जो दुनिया को चेंज कर सके। इन नेताओं में वाइब्रेशन की ताकत है, बताओ कौन सी ताकत है? वाचा की ताकत है, भाषण कैसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाल बजा बजा के आवाज ही आवाज कर देते। सभी देशों में आवाज कर रहे हैं कि नहीं है? जो जितना बढ़िया भाषण कर देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं वाचा के आधार पर, उनको ही गद्दी के ऊपर बैठा देते हैं। ऐसी वाचा की ताकत दिखाने वाले राजाओं का कोई माई बाप होगा या नहीं होगा? कभी उन आत्माओं का कोई माई बाप नहीं होगा है? होगा होगा, क्योंकि गाल बजाने वालों का भी तो बाप होना चाहिए, गाल बजाने वालों की भी तो माँ होनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं, सबा का बाप या सिर्फ है? बुद्धिमानों की बुद्धि है सबका बाप। तो गाल बजाने वालों का भी बाप कौन है, गाल बजाने वालों की भी अम्मा कौन है? बेहद की अम्मा, जिसकी कोई अम्मा नहीं इस दुनिया में। उस अम्मा के साथ अगर कोई वाचा में भिड़ना चाहे तो हाथ उठाओ। कोई है? एक भी हाथ नहीं उठाता। इसे साबित होता है कि गाल बजाने में उसकी सुप्रीमेसी सबने स्वीकार कर ली। तो वो वाचा की देवी वाक देवी कही जाती है सरस्वती। बाप कौन सा? जगत पिता। अच्छा, वो गाल बजा रहा है तुम्हारे हिसाब से? वो गाल बजा बजा के विश्व की भाषा ही ले लेता है, कंट्रोल करता है सारी दुनिया को। ताज ताज पवित्रता का ताज, राजाई का ताज धारण करता है, वो धारण करता है। ज्ञान सुना रहा है, माने उस ज्ञान में तंत्र नहीं है, फालतू बैठे हैं। है? संत तब कहा जाए, या तो इसको गद्दी मिल जाए, कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, पुलिसिया ताकत मिल जाए, मिलिट्री मिल जाए, जो जबरदस्ती कोई से कुछ काम करा सके, जो कराना चाहे सो करा सके, ऐसा तो कुछ ऐसी कोई पावर मिलती है? हैं? बेताज बादशाह किसके ऊपर है? बेताज बादशाह आपके ऊपर बेताज बादशाह है। आ जाओ हमारे साथ काम करो, ले लो इनके साथ, इनको अपने साथ। माताजी कह रही है आप बेताज बादशाह हैं, आप जैसा चलाएंगे हमको चलना ही पड़ेगा। उधर देखो, उधर उधर रेडी है? बिल्कुल रेडी। ठीक है, अब ये इन्हीं कपड़ों से आज हमारे साथ ही चलेंगे, चलेंगे ना है? बीच में भागना नहीं है? नहीं नहीं भागूंगी, अभी तक क्यों भागते रहे? हाँ जी, तो शंकर नहीं है गाल बजाने वाला। अगर शंकर का पार्ट गाल बजाने वाला है तो फिर गीता में सिद्धा नाम कपिलो मुनि सांख्यों का सरताज किसे कहा?
कपिल मुनि कहाँ का वासी? कौंडिन्य नगर का वासी कपिल मुनि। या यूं कहें कपिल मुनि के नाम पर बताई गई नगरी कौंडिन्य नगर। ये कपिल मुनि सांख्य शास्त्र का सबसे बड़ा प्रणेता माना गया है। सांख्य का मतलब है जिसने ईश्वरीय ज्ञान को विस्तार से समझाया, व्याख्या पूर्वक समझाया, खुद भी समझा और सारे संसार को समझाने के निमित्त बना, तो उसको सांख्या नाम कपिलो मुनि, सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा गया। क्योंकि सिद्धि उसी को प्राप्त होती है जो योगी होता है, बिना योग के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इससे साबित होता है कि जो योगी है वही ज्ञानी है। संपूर्ण ज्ञानी माना संपूर्ण योगी। तो वो गाल बजाने वाला है, कैसे हो सकता? तो फिर है कौन? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में गाल बजाने वाला अगर कोई कहे मेल के रूप में, तो दादा लेखराज ब्रह्मा। हाँ बोली, फिर हो करके बोला करो बाबा के सभा में। है
हैं? परमपिता
शिव, परमपिता शिव, अंगन प्रदेश
अलगे तो दोनों
मरी का सबसे बहुत ज्ञान। अरे गाल किसके? ब्रह्मा की आत्मा की है ना, तो वो जबरदस्ती करता है, है? वो तो जबरदस्ती नहीं करता, वो तो तन लेता है, तन लेता है, तन का नाम ब्रह्मा रखता है। तो जो तन लिया उस तन से उसने मुख का काम भी बजाया है, तो मुख वाले मुख वंशावली संतान पैदा की या कुख वंशावली संतान की श्रेष्ठता हुई है? और मुख वंशावली संतान जो पैदा हुई उसको ये कहेंगे कि वो गाल बजाने से पैदा हुई है? ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने गाल बजाए तो मुखवंशावली पैदा हुए, ऐसे तो नहीं कहेंगे। गाल बजाना कहेंगे उन बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, जिन्होंने वेद को महत्व दिया। गाल सिर्फ ऐसे सुना, गाल की बात को जैसे मेंढक बोलते हैं ट्रा 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 ट्रा, कोई ध्यान नहीं देता है। तो गाल बजाने को उन्होंने लिया, किन्होंने? वेद का सुख लेने वालों ने, मुखवंशावली ब्राह्मणों ने। जो मुखवंशावली ब्राह्मण है उनकी तो बुद्धि में भी नहीं आता है कि ये गाल बजाने वाला है। आज के नेताएं देश देशांतर में गाल बजाने वाले हैं, हम देश का सुधार करेंगे, हम अपने देश को जन्नत बनाएंगे, हम अपने भारत में राम राज्य लाएंगे, हम दिल्ली को परिस्थान बनाएंगे, ऐसे बरगलाते हैं ना। तो उस बात पर जिनको विश्वास हो जाता है उनके लिए कहेंगे कि वो समझते हैं, प्रभावित हो जाते हैं गाल बजाने से। तो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में गाल बजाने वाला ब्रह्मा, विष्णु या शंकर है? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो है प्रैक्टिकल में गाल बजाने वाली।
खुद भी ध्यान नहीं दिया हम क्या बोल रहे हैं, और दूसरों को भी गहराई से कभी समझा ही नहीं सके कि जो हमने बोला उसका अर्थ क्या है। तो बाल बजाने वाली बात हो गई, वास्तविकता क्या है। है यही है ना कि दुनिया में अगर सर्वोपरि कोई व्यक्तित्व है इस दुनिया में गाल बजाने वाला तो कौन है, है? ब्रह्मा। और विष्णु को क्या कहें, है? प्रैक्टिकल में करके दिखाए। विष्णु पार्टधारी पुरुषार्थी जीवन में क्या करता है, पुरुषार्थी जीवन में आंख की पवित्रता धारण करता है। अरे कौन सी पवित्रता धारण करता है, है?
नो
नो विष, आंख में विष नहीं आता है, आंख के आंख से आंख मिलेगी, अंग से अंग मिलेगा तो वो भगवान है वास्तव में, है ना। पूर्व जन्म में भगत तो नहीं थे वैष्णवपंथी, है? अगर भगत रहे होंगे विष्णु के वैष्णव संप्रदाय वाले तो विष्णु को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो हो सकता है आपके लिए हो, आप इस जन्म में भी है, उसको संग का रंग नहीं लगता। अरे बोला हाँ या ना, लगता है तो भगवान का आएगा। भगवान कौन है जिसको संग का रंग न लगे। ग्रेट फादर्स जो कहे जाते हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, उन सब को संग का रंग लगता है। क्या यहाँ तक के राम वाली आत्मा को भी अगर शिव की याद न करे जिस क्षण, तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है, है? लगता है। नीचे गिरता है या नहीं गिरता है, तो उसको काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है, उसको जिन्नात का काम मिला हुआ है। क्या भूत प्रेतों में सबसे बड़ा पावरफुल होता है जिन्नात, जिन्न कहते हैं उसको, दो शब्दों से मिलकर बनता है जिन्न, जित न। क्या जित न माना जिन्न, जित न, जिसको कोई जीत न सके। जैनियों में भी नाम है क्या, जिन जिनेन्द्र, जिन का मतलब यह है जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो अंतर क्या है, जिनेन्द्र और जिन में अंतर क्या है, है? हाँ, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेन्द्र, और जिन जिसको किसी ने नहीं जीता, जित ना माने इस पतित दुनिया में जिसको कोई भी जीत नहीं सका वो है जिन। उसको काम दिया है, क्या है वो जिन कहता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे को काम दे दो, मैं बेकार बैठा हूँ, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो काम दिया, क्या करो, है? चलो शंकर जी को दिखाते हैं ना चित्र में, नहीं दिखाते, चित्रों में शंकर को याद की स्टेज में ऊपर चढ़ा हुआ दिखाते हैं, धर्म पिताओं को भी ऐसे ही दिखाते हैं। तो वो है उनकी चढ़ती कला की याद, तो ऊपर चढ़ रहे हैं, उनकी आत्मा ऊपर चढ़ रही है। ये डायरेक्शन गीता में दिया है क्या, हरे आत्मा आत्मानम, उत मने ऊपर, हरेत मने हरण करके ले जाए जबरदस्ती, जिसे दुनिया भी आशिक मासूक होते हैं ना, जिसे मासूक का दिल आ गया बाह पकड़ लिया और जबरदस्ती हो घर में से निकाल के ले गए, हरण करके ले गए या माँ बाप को संतुष्ट करके ले गए, हरण करके ले गए जबरियन। तो ऐसे ही हरेत आत्मा आत्मानम, माना ज्योति बिंदु आत्मा को, क्या है आत्मानम माने ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ले जाए, काहे के द्वारा, मन बुद्धि के पुरुषार्थ के, मन बुद्धि का पुरुषार्थ करके ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके हरे ऊंचा ले जाए, नीचे गड्ढे में न जाने दे, उसको कहेंगे पक्का कर्म योगी। क्या, कर्मेंद्रियों से कर्म करे लेकिन मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को हरे जबरियन हरण करके ऊपर ले जाए ऊंची स्टेज में। ना आत्मानम अवसादये, मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा को अवसादये, नीचे गिरने न दे, क्या पुरुषार्थ करे, नीचे न गिरने दे। तो जिन्ना तो कोई धंधा दे दिया, वो तो है ही भूत प्रेत, तो खुद भी नीचे गिरता है, उसका स्वभाव है, और दूसरों से भी पाप कर्म करा देता है, तो उसको धंधा दिया, क्या करो, बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे गिरो, तो उसको ये धंधा मिला हुआ है। सबसे जास्ती ऊपर चढ़ना और सबसे जास्ती नीचे गिरना कितनी आत्माएं करती हैं, आठ आत्माएं हैं जो सबसे जास्ती चढ़ती भी है पुरुषार्थ में और फिर गिरती भी है, उतार चढ़ाव उनके जीवन में बहुत होता है। और सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि कौन बनता है, माने सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि करने वाली आत्मा कौन है, ब्रह्मा। अनिश्चय रूपी मौत इतनी ब्रह्मा की होती है बार बार, उतनी और कोई आत्मा की नहीं होती। इस षष्ठ चक्र में ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग की पहली पीढ़ी की पहली आत्मा, पहला पत्ता जितना जन्म मरण के चक्र में आता है उतना और कोई नहीं आता। तो नीचे गिरता होगा कि नहीं जाता है, तो अपने शरीर से गिरता है, अपने साकार शरीर से गिरता है या सूक्ष्म शरीर से नीचे गिराता है, है? सूक्ष्म शरीर से नीचे गिराता है तब नाम पड़ता है उसका शंकर, माने आत्माओं के पार्ट का संकरण है, मिश्रित पार्ट है। वो आत्मा चंद्रमा के रूप में कहते हैं ना, कृष्ण चंद्र, चंद्र शब्द क्यों लगाया कृष्ण के आगे, क्योंकि चंद्रमा कलाएं बढ़ती भी हैं और चंद्रमा की कलाएं घटती भी है। सबसे जास्ती किसकी कलाएं बढ़ती हैं, चंद्रमा की,
कृष्ण की, राम की तो 14 कला और कृष्ण की 16 कला, भरती राम की भी है, इसलिए राम को भी रामचंद्र कहते हैं। लेकिन जितनी कृष्ण की कला बढ़ती है चढ़ती है उतनी राम की नहीं बढ़ती। राम की 14 कला गाई हुई है और कृष्ण की 16 कला गाई हुई है। तो कृष्ण वाली आत्मा जो सबसे जाती 84 जन्म लेने वालों के बीच में सबसे जाती चढ़ती कला में भी जाता है और सबसे जाती यानी मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में सबसे जाती आता है। तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर से जिसमें भी सबसे जास्ती प्रवेश करने का उसका पार्ट नुदा हुआ है, किसके साथ नुदा हुआ होगा, हिसाब क्या है, किस आत्मा के साथ उसका ज्यादा प्रवेश करने का ज्यादा जन्म मृत्यु पाने का हिसाब नुदा हुआ है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में उसमें प्रवेश करके ज्यादा पार्ट बजाता है उस आत्मा में और दोनों की आत्मा में क्या संबंध है, है? मतलब दूसरा कोई संबंध नहीं है, जगदम्बा में तो अंत में प्रवेश करता है या 63 जन्म लगातार प्रवेश करता है, अंत में प्रवेश करता है। तो जिसमें ज्यादा उसका प्रवेशता का पार्ट है वो कौन, माने 63 जन्मों में राम वाली आत्मा के साथ उसका जितना हिसाब किताब है उतना और किसी के साथ नहीं, माने राम वाली आत्मा ने ज्यादा संकल्प चलाया होगा क्या, संगम में शूटिंग पीरियड में संकल्पों की सिद्धि होती है या नहीं होती है, हैं? ब्राह्मणों के संकल्पों की सिद्धि होती है, जो ब्राह्मण जैसा संकल्प चलाएंगे वैसी वैसी उनकी शूटिंग होती है। तो जिस ब्राह्मण ने जितना जास्ती संकल्प चलाया होगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जन्म ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ रहे, क्योंकि कान से सुन लिया जान लिया समझ भी लिया कि इतनी सहनशील आत्मा प्रैक्टिकल में और कोई होती ही नहीं, होती है या नहीं, नहीं होती है। ब्राह्मणत्व जीवन में प्रैक्टिकल में ये अनुभव करने वाली बात जहां तक आती है तो 47 से लेकर के और 69 18 जनवरी तक जो पार्ट बजाया दादा लेखराज ब्रह्मा ने उस जीवन में एक ही आत्मा साबित होती है जिसने सबसे जास्ती सहन करने का पार्ट बजाया। तो जब पता चल गया तो बहुत होंगे जिनका संकल्प पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा चला होगा कि हमारे ज्यादा जन्म मम्मा बाबा के साथ हो या ब्रह्मा बाबा के साथ हो या मम्मा के साथ, बाबा बोलते ही हैं वाणी में, ब्रह्मा वाक्य है ना मुरीद में, कोई मम्मा के मुरीद कोई बाबा के मुरीद कोई ब्रह्मा बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, अरे जानता ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से, जानता है, जानता है। 76 तक शिव बाबा के प्रैक्टिकल पार्ट को स्वरूप को किसी ने जाना क्या, है 77 तक भी नहीं जाना, क्योंकि 77 है बाप का संपूर्णता वर्ष, 76 था प्रत्यक्षता वर्ष, तो 77 पूरे होते होते भी किसी ने नहीं जाना पक्का पक्का, फिर नंबर वार जानते हैं। तो जिन्हें जिन्होंने ये बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा बाबा जैसी सहनशील आत्मा दुनिया में और कोई है ही नहीं, तो उन्होंने तो संकल्प चला लिया अपने कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा साथ ही मिले, जन्म में कोई न कोई जन्म में मिलता रहे तो हमको बहुत सुख होगा। क्या सहन करने में सुख होता है या सहन कराने में सुख होता है? सुख काई में होता है? दुर्योधन दुशासन जिनको टाइटल मिलता है उनको सहन कराने में ज्यादा सुख मिलता है या सहन करने में ज्यादा सुख मिलता है? है? कराने में ज्यादा सुख मिलता है। कन्या माताओं से कोई ने पूछा कि कन्या माताओं को तो दुर्योधन दुशासन का टाइटल नहीं मिलता? कोई कोई कन्या माताएं हैं बिरली, उनको सूतन खा पूतना का टाइटल मिलता है भगवान से। तो क्या कन्या माताएं कोई है ये पुरुष जन्म ज्यादा लेने की संकल्प चलाने वाली हो? कोई ने चलाया है? हाँ, जो रुद्रमाला के मन के होंगे उनका संकल्प चल सकता है। क्या के हम तो राजा बनेंगे, बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है क्या पुरुषार्थ करके क्या बनो? राजा बनो। राजाओं को जितना सुख होता है उतना और किसी को नहीं। राजा है ढेर की ढेर रानियां रख सकते हैं, उनसे सुख ले सकते हैं, और रानियां बिचारी तो एक ही राजा दूसरा न कोई वैरायटी माल तो मिला नहीं तो इसलिए वो राजा बनना ज्यादा बढ़िया है। और ऊपर से बाबा ने बोला बच्चे क्या बनना है? राजा बनना है। तो भगवान बोल रहा है राजा बनना है तो और ज्यादा खुशी। तो रुद्रमाला के मन के जो बनने वाली आत्माएं हैं जिनमें संस्कार है पूर्व जन्म के, पुरुष जन्म के ज्यादा जन्म लेने के, उनके ये संकल्प चल सकते होंगे क्या कि हम ज्यादा जन्म पुरुष बने, स्त्री चोले में तो सहन ज्यादा करना पड़ता है। चलो सतयुग त्रेता में सहन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो तो 21 जन्म, और यहाँ तो ये तो 63 जन्म की दुनिया है द्वापर कभी भी, यहाँ तो कितना सहन करना पड़ेगा है? तो इसलिए अच्छा है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म जन्मांतर रहे तो हम बहुत सुखी होंगे। कोई संकल्प चलाया कि नहीं चलाया? एडवांस में बाबा के साथ चलाया, बाबा ज्यादा सहन करेगा? अरे उसके लिए तो बोला बाबा माने शंकर की तरफ इशारा किया ना। हाँ, बाबा माने शंकर पाठधारी। तो अगर शंकर पाठधारी का ज्यादा संकल्प चलता है तो शंकर के लिए तो बाबा ने बोला है, ये तो सोता ही रहे तो अच्छा है। हा? ये तो आंख बंद करे सोता ही रहे, जो आजकल चित्र दिखाए जाते हैं, पहले ये चित्र नहीं दिखाए जाते थे, और आजकल यही चित्र दिखाया जाता है, जहाँ देखो वहाँ बस छोटा बच्चे की तरह पड़ा हुआ है और कहा त्रिशूल नहीं छोड़ता है। क्या त्रिशूल में डमरू बना हुआ है वो भी नहीं छोड़ता है, लेकिन सो रहा है आराम से, इतनी मजबूती है त्रिशूल की। तो वो सो रहा है, बाबा कहते वो अच्छा, आँख खुलेगा तो खतरनाक है या फायदेमंद है? और बहुत खतरनाक है। तो वो उसके साथ पता नहीं आ रहा, बस पलट गई माता फौरन पलट गई क्या पता है फिर आपको?
ब्रह्मा बाबा से तो मिले नहीं ना बाबा।
ब्रह्मा बाबा से मिले नहीं तो क्या हुआ? आत्मा तो है ना, अभी इस सच रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा वाली आत्मा हमें पता लग गया ना, कहाँ पार्टी बजा रही है? नहीं पता लगा वो तो ठीक है, वो तो बोलते हैं गाते हैं,
तो अभी प्यार दे रहे
हैं। ये तो भक्तों का गीत है ना, ये भक्तों का गीत है, तुम एव माता च पिता तुम एव सर्वम मम देव देव, ये मुख से बोलते हैं कि अंदर की आवाज आती है? मुख से बोलते हैं, अंदर से तो कोई पक्का नहीं कर पाता।
अभी प्यार दे रहे हैं ना बाबा?
हैं?
अभी प्यार से दे रहे हैं।
अभी बाबा क्या दे रहे हैं?
प्यार दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।
बाबा प्यार दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बाबा जो प्यार दे रहे हैं वो सबको एक जैसा थोड़ी दे रहे हैं। कुमारों को जो चाहिए, कुमारों की एक चिंता, अदर कुमार की 9999 चिंताएं, वो दोनों की बराबर बता दिया, बल्कि और ज्यादा ही पलड़ा भारी हो जाता है कुमारों का। तो सबको एक ही तराजू से तौल दिया। कुमारों का हिसाब अलग, कुमारियों का हिसाब अलग, माताओं का हिसाब अलग, अदर कुमारों का अलग हिसाब है। तो बताया कि जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा अच्छे से बेसिक नॉलेज के समय, वो तो यही संकल्प चलाएंगे ब्रह्मा बाबा के साथ हमारे ज्यादा जन्म हो, ऐसे संकल्प चले बाबा की याद में रह बैठ करके, तो वो सिद्ध होंगे या नहीं होंगे? सिद्ध होंगे। तो
ऐसे संकल्प चलाने वालों में राम वाली आत्मा आगे गई होगी या नहीं गई होगी? है कि सरस्वती वाली आत्मा आगे गई होगी? राम वाली आत्मा। इसलिए दो साथी गए थे जब कांग्रेस की जो निशानी बनी थी ना, वो दो बहनों की जोड़ी बनी थी। कौन कौन से दो बहन? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, दोनों ही बैल है, लेकिन एक है लेफ्टिस्ट, क्या है
लेफ्टिस्ट,
और एक है
राइटिस्ट।
कौन है राइटिस्ट? राम वाली आत्मा राइटियस है। ज्यादा टिक टिक कौन करती है? हैं? टिक 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 करती रहती है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। कौन टिक टिक करती है? हैं? अरे राम वाली आत्मा टिक टिक तो बहुत करती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। और ब्रह्मा वाली आत्मा हैं? टिक टिक करती है कि ढेरों को इकट्ठा कर लेती, आ आ आ आ। जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाने वाले एक किसान है, वो जानते हैं जो राइटियस बैल है उसको जब मोड़ना होता है तो कहते हैं हा 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 हा, और लेफ्टिस्ट बैल को मोड़ना होता है तो कहेंगे टिक 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 टिक। तो ये दोनों बैलों से चिड़े हुए होने की बात अभी की है, इस समय पक्की पक्की चैतन्य में शूटिंग होती है क्या? लेकिन जब बोलते हैं आराम, क्या बोलते हैं आराम, तो आराम कब मिलता है? हैं? राम वाली आत्मा से आराम कब मिलता है? देखो बाबा ने तो मुरली ब्रह्म वाक्य में यही बोला है कि राम सीता को कहेंगे खादी का राजा रानी। क्या बोला? खादी जो है वो बरसात में बहुत दुख देती है, माने ज्ञान की बरसात का युग है संगम युग, सबको दुखदाई, सारी दुनिया को दुखदाई। नहीं नहीं अरे सारी दुनिया के लिए बड़ा दुखदाई। पार्ट पहचानने में आसान है या कठिन है? है? पार्ट पहचानने में भी कठिन है और फॉलो करने में भी कठिन है। उसका पूरा पूरा श्रीमत पर फॉलो करना कितना कठिन है, विश्वास भी नहीं बैठता। घड़ी घड़ी अविश्वास पैदा होता है, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है। तो जब घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है तो जिसके ऊपर अनिश्चय पैदा होगा उसके उसके वाक्यों को कोई फॉलो करेगा?
उसकी मत पर कोई चलेगा, जल्दी जल्दी चलने के लिए तैयार भी नहीं हो पाता। तो राम सीता के लिए कहा है खादी की राजा रानी, क्यों? क्योंकि खादी ज्ञान बरसात का जो मौसम है, युग है, संगम युग है, इसमें बहुत भारी हो जाती है। क्या ये ज्ञान जल तो बहुत पीती है, लेकिन सबके लिए, सबके लिए भारी हो जाती है। कैसा कहा, भारी हो जाती है या हल्की हो जाती है? हैं? भारी हो जाती है। भारी हो जाने माने सबका दिमाग भारी कर देती है, और गंदी भी बहुत जल्दी होती है, ज्यादा गंदी होती है। बरसात के मौसम में खादी जितनी गंदी होती है, इतना दूसरा कोई कपड़ा माने हो, शरीर रूपी वस्त्र जितना गंदा होता है, उतना और कोई के वस्त्र गंदा होता ही नहीं। इसलिए कहा राम सीता हैं खादी के राजा रानी। सीता कौन है? अच्छा, लक्ष्मी दुखदाई है। लो, लक्ष्मी वाली माता आत्मा, उस आत्मा को याद करने से आपका माता भारी हो जाता है। कैसी कैसी बातें करते हैं, बिना सोची सोची जवाब दे देते। कौन माथा भारी कर देती? अरे राधा भी निकली तो सीता भी निकली, ब्रह्म वाक्य है मुरली में। कौन है राधा और कौन है सीता? है राधा लक्ष्मी। राम माने राम को, धा माने धारण कर रही है। जिसने राम को जीवन में अच्छी तरह से धारण कर लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े प्यार से रहते हैं, तो है राधा। ब्राह्मणों के संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी धारण करती है मन बुद्धि से, और 84 जन्मों में भी धारण करती है। इसलिए वो है जन्म जन्मांतर की राधा, जैसा काम वैसा नाम। और दूसरा नाम क्या बताया? राधा भी निकली और सीता भी निकली। वो बम्बईया लोग गीत बनाते रहते हैं, क्या बनाया? तेरे मन की क्या? अरे मेरे मन की गंगा है? मेरे मन की गंगा तेरे मन की राधा, ऐसा कुछ गीत बनाते हैं ना। लेकिन वो तो गंगा और राधा का गीत बना देते हैं, लेकिन वास्तव में है जगदम्बा, महाकाली और महागौरी की बात। कोई को जगदम्बा का पार्ट अच्छा लगता है, वो है सीता का पार्ट। सीता माने शीतल, ठंडी बुद्धि। कैसी? कहाँ से पैदा होती? धरणी से पैदा होती। पांच तत्व में जो मुख्य तत्व धरणी है, धरणी से ही पैदा होती और धरणी में ही समा जाती। वो है सीता। और सा सीता के लिए बोला, कौन ले गया? है रावण ले गया। तो रावण ले गया जो सीता, वो सीता, और रावण जिसको नहीं ले जा सका, क्योंकि बोला है तुम सब सीताएं हो, तुम सब में कौन है? तुम सब सीताएं, तुम किसके लिए कहा? कौन? बाबा के सन्मुख कौन? रुद्रमाला के मन के, दिव्य माला की नहीं, दिव्य माला के मन के वो कभी सन्मुख होते ही नहीं है। जब रुद्रमाला दिव्य माला में ऐड की जाती है तो लक्ष्मी तो सबसे पहले पिरोई जाती है, तो सन्मुख हुई या नहीं है? तो टोटल कितने हो गए?
हैं सूर्यवंशी पक्के पक्के कितने हो गए, साढ़े साढ़े चार लाख, साढ़े चार लाख सितारे दिन के ज्ञान सूर्य से रोशनी लेने वाले और साढ़े चार लाख सितारे रात्रि के ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में पलने वाले। तो जो ज्ञान सूर्य से रोशनी वाले सितारे हैं उनमें रुद्रमाला भी है और विजयमाला भी है। तो इन दो की बात है, दो का जो मुखिया है, रुद्रमाला का मुखिया फीमेल कौन, जगदम्बा, और विजयमाला का मुखिया फीमेल है विजय लक्ष्मी, विजय जलाने वाली लक्ष्मी। तो ये दो की बात है, एक है सीता और एक है राधा। तो बताया संयम युग में तो जगदम्बा है, ब्रह्मा वाली आत्मा प्रैक्टिकल में, लेकिन चार युगों में जगदम्बा कौन है फिर है? ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो क्या दूसरे धर्मों में जाकर के वो माता का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यभिचारिणी बनती है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत सहन किया, जो जगदम्बा है इसने क्या बहुत सहन किया, किया नहीं किया? हाँ जी, तो प्रसन्न चल रहा था राधा राम को धारण करने वाली वो सीता, सीता का प्रसंग चल रहा था कि खादी की राजा रानी, जो खादी की राजा रानी है राम और सीता, वो संगम युग में बहुत दुखदायी, और द्वापर में कलयुग में दिमाग लोगों का गर्म रहता है, गर्मी का सीजन या ठंडी का सीजन है, गर्मी का सीजन, तो द्वापर और कलयुग में ठंडी रहती है, तो सुखदाई है या दुखदाई है, सुखदाई, और सतयुग और त्रेता में गर्म रहती, तो वहां भी सुखदाई, दो सीजन में बहुत सुख देती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, क्योंकि बरसात का जो मौसम है संगम युग बेहद का उसमें बहुत दुखदायी हो जाती है। तो क्या पसंद है, क्या पसंद आएगा, जो बच्चा बुद्धियों को क्या पसंद आएगा, और जो सालिम बुद्धि है उनको क्या पसंद आएगा है? अरे है संगम युग में, संगम युग में बाबा साथ में रहते हैं, मैंने ब्रह्मा कुमारियों के साथ में बाबा रहते हैं है? अरे
तीनों काल का ज्ञान मिलता है,
तीनों काल का मैंने ब्रह्मा द्वारा तीनों काल का ज्ञान नहीं मिलता है, सीढ़ी का, चक्कर का, षष्ठी चक्र का, षष्ठी वृक्ष का, तीनों काल का ज्ञान नहीं मिलता है?
सार नहीं मिला,
सार नहीं मिला, सार मनी
मनन चिंतन मंथन तो यहाँ हुआ था,
विस्तार हुआ ना है, विस्तार में जाने में फायदा या सार में टिकने में फायदा? हमारे जी क्या कह रही सार में जाना उसमें फायदा है, जितना हम सार में बिंदी में टिकेंगे उतना हमको फायदा है, क्यों? क्योंकि बिंदी में सब कुछ भरा हुआ है, जितना बिंदु रूपी स्टेज में टिकेंगे उतना बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और जितना बुद्धि सूक्ष्म बनाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, वो ही असली मेहनत है। बाकी वो मेहनत करने के बाद जब छोड़ देंगे तो विस्तार अपने आप हो रहा है। क्या हिम्मत करके, प्रैक्टिस करके, किटकिटी बांध करके याद में बैठो कि बिंदी रूप में टिकना है अमृत वेले, और जिस दिन अमृत वेले बिंदु रूप में ज्यादा टिकेंगे, सारा दिन अनुभव करें कि ज्ञान का विस्तार बुद्धि में होता है या नहीं होता है, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है या नहीं चलता है, ज्यादा चलेगा तो काय में फायदा है, सार में टिकने में फायदा है, और वो सार स्वरूप समय है अमृत वेला। वो टाइम जितना अच्छा है सूर्योदय का, सूर्योदय होने के टाइम जितना अच्छा समय है, उतना 24 घंटे में कभी भी नहीं। इसलिए भारतवासियों ने जब सूर्य पूरब में उगा था ईशान कोण में, तो सबसे पहले भारतवासियों को फायदा होता है, सबसे ज्यादा फायदा भारतवासियों को होता है। वही सूर्य दो पैर तक आते आते सिख स्थान सिंध स्थान तक आ जाता है, सिंध और सिख स्थान पंजाब सिंध तक आ जाता है, जोर से चमकता है ना, क्या ये जोर से चमकता है तो सिखों की आंखें खुल जाती है। अभी कोई सिख नहीं जाग रहे हैं, हाथ उठाना जरा, सिख धर्म से कोई आए हैं क्या? हाँ, कोई नहीं। मोस्टली सभी सेंटर्स में ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सिख बहुत कम, अगर कोई आए भी होंगे तो एक दो जन्म से कोई कन्वर्ट हुए होंगे, एक जन्म से वो ही आए होंगे। जैसे हमारा कौन रफीउल्लाह कंपिल का, वो बड़े फखर से कहता है बाबा ने मुरलियों बोला, जो एक दो जन्म के कन्वर्ट हुए होंगे वो फट से निकल आएंगे, उनको थोड़ा सा सुनाओ और पटाख के ज्ञान में आ जाते हैं। तो हम तो एक दो जन्म के कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, ज्यादा जन्म हम मुस्लिम धर्म में नहीं रहे, तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। तो ऐसे ही है जो आप
ज्ञान की बारिश के
अच्छा, सारा दिन विस्तार में जाओ, जा पाओगे? सारा दिन विस्तार में जाकर के, अथवा ब्राह्मण जन्म में सारा जन्म जो भी दिन आए विस्तार में जाते रहो, विस्तार में जाते रहो तो फायदा होगा। दुनिया के जितने भी फिलासफर्स हुए हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, हुए हैं कि नहीं, उन्होंने विचार सागर मंथन ज्यादा किया या नहीं किया है? तो वो कलयुगी दुनिया में आके पैदा होते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, या सतयुग में पैदा होते हैं है? तो विस्तार में जाने से उनको फायदा हुआ, या सार में टिके हैं तब फायदा हुआ है? सार कहते हैं मक्खन को, मी को, व्रत, और विस्तार कहते हैं छाछ को। ज्यादा ताकत काहे में? सार में ज्यादा ताकत,
ठीक है, वो सार भी तभी निकलता है जब हम मथानी मथते हैं, मथे बगैर सार निकलता नहीं। तो आरस परस है क्या, जितना हम विस्तार में जाएंगे उतना क्या होगा, सार में भी टिकेंगे। लेकिन सार में टिकना इसलिए अच्छा है कि जो सार स्वरूप है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज, और मनुष्य सृष्टि के बीज को पहचानना ये तो बहुत बड़ी बात है। आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आते ही किस लिए है, है? देखो सन 36 से आए और सन 76 तक ज्ञान देते ही रहे, दिया ना 40 साल जो ज्ञान दिया, 41 साल, उसका रिजल्ट क्या आया? और अभी तक भी वही ज्ञान मिल रहा है, ईश्वर का ही ज्ञान मिल रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकला, खर्तेल क्या निकला, कुछ निकला, नंबर बार निकला क्या है, क्या निकला, लक्ष्मी माने एक युगल निकला, लक्ष्मी नारायण माने दोनों के संस्कार मिलकर के एक युगल मणका बन गया। तो वो निकले, वो निकले अपनी बुद्धि में निकले या हमारे लिए निकल गए, हम सबके लिए निकले हमारी सबकी बुद्धि में, या वो अपनी बुद्धि में निकल गए, है? उन्होंने खुद को पहचान लिया होगा। हम सब ने तो नंबर बार पहचाना, या जैसा उन्होंने पहचाना होगा वैसा हमने पहचान लिया, नंबर बार पहचाना, तो इसमें भी अंतर पड़ गया ना। अब तक के 80 साल का जो ज्ञान लिया है उस ज्ञान में से रिजल्ट क्या निकला, मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान ही दी गई। लेकिन पक्की पक्की पहचान जो माया की परीक्षाएं हो, क्या भले माया किसी को नहीं छोड़ती है ये हमने जान लिया, फिर भी कौन बचेगा, है? एक ही बचेगा, 100% जिसकी बुद्धि में पहचान भरी हुई होगी वो एक बचेगा। तो सारा ज्ञान 80 साल किसके लिए हुआ, है? एक के लिए हुआ, एक की पहचान देने के लिए उसने इतनी मत्थापट्टी की। कोई क्रॉस क्वेश्चन आता हो तो बताओ, है? कलकत्ते के रविंद्र भाई को तो ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं, ये राम की आत्मा खुद भगवान बन के बैठ गई, अरे कौन है राम की आत्मा, कुछ पता तो लगता नहीं।
हाँ,
वो कौन आत्मा, हाँ वो आत्मा, अब पता तो लगते नहीं है ना, कौन पूज्य बनता है, कौन पुजारी, वो शिवलिंग किसकी यादगार है, कौन छाती ठोक करके अभी सुप्रीम कोर्ट में बताएगा, हाई कोर्ट दिल्ली का पूछ रहा है ये कौन है वीरेंद्र देवजी, उसी की ओर ब्रह्मा कुमारियों ने नोटों की गद्दियां फैला फैला करके ये टीवी चैनल वालों को अखबार वालों को उखाड़ा हुआ है। अपने आप सब कुछ होता है या बाबा के बच्चों को करना पड़ता है, बड़ा बाबू
कान पकड़ लिया। तो 80 साल में एक आत्मा निकलती है, 80 भी न कहे, क्योंकि वो एक भी किसी काम की नहीं है। वो एक संसार के काम की है, है? दुनिया को उस एक से फायदा हो पाता है कुछ? अरे अभी तक हुआ फायदा, देश के वाले है करोड़ों की तादाद में निकले हुए हैं, नहीं निकले दुनिया में निकले, उनको फायदा हो रहा है? वो तो कहते हैं ये तो आतंकवादी है, फायदा कहाँ हो रहा है? एडवांस वालों को फायदा हुआ, फायदा हो रहा है कि निश्चय निश्चय के चक्कर में डोलने लगते पड़ते हैं, हैं? डोलते हैं या नहीं डोलते? उनकी अम्मा क्या करती है? विरोधी तो बन गई, अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे रह जाएंगे, हैं? जब अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे विरोधी बनने से बच जाएंगे, है? नहीं बचेंगे। अम्मा माने धरणी, और धरणी प्रभावित हो गई, धरणी पर परछाया पड़ गया, चंद्रमा का परछाया, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल का परछाया धरणी रूपी जगदम्बा महाकाली के ऊपर पड़ गया, प्रभाव में आ गई और वो उल्टा पलटा बोलने लग पड़ी, तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ेगा? ये धरणी है, ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा का रोशनी जो है वह धरणी पे पड़ रही है, उसका उल्टा हिस्सा सूर्य के ऊपर पड़ा, तो इधर वालों को सूर्य अंधेरा दिखाई पड़ेगा या उजाला दिखाई पड़ेगा, है? अब मान लो सारी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, ये भी तो होता है, कभी आधी धरणी पर कभी पूरी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, सूर्य पूरा अंधेरा दिखाई देने लगा, धरणी पर रहने वालों को अंधेरा दिखाई पड़ेगा ना? तो पूरी धरणी माने सीता, जगदम्बा माने महाकाली, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण से प्रभावित हो गई, माने महाकाली के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा, एकदम तामसी रूप धारण करके महाकाली का साथ देता है, तब तक संभावना है कि गुलजार दादी जीवित बची रहेंगी 28 तक, अभी हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है, बोल नहीं पा रही, 10 साल में तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी तो पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी, क्या बोला है? 40 से 50 वर्ष लेते हैं तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो, यानी 50 है तुम बच्चों के लिए, माने 28 तक पूरी राजधानी तुम बच्चों की स्थापन होगी। जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, 1, 2, 4 को भी संशय आता रहता है तो राजधानी में खतरा है या नहीं खतरा है, है? वो दूसरी पार्टियों से मिलकर के कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? भले बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी विरोधी एक भी विधर्मी इसमें पाव रख नहीं सकेगा। तो 28 से पहले होगा, 26-27 में हो जाएगा, या 28 पूरा होने के बाद ही होगा 27-28 है पहले हो जाएगा। अरे 10 साल बोले हैं पूरे, 40 से 50 साल कब पूरे होते हैं? 77 था संपूर्णता वर्ष, तो उसमें 40 साल और जोड़े तो 2017 आता है, तो 17 और 10 और जोड़ो 27 पूरा हो जाता है। तो गुलजार दादी तो रहेंगी नहीं, फिर वो चंद्रमा जब तामसी बनेगा तब किसका आधार लेगा? है जगदम्बा का ही आधार लेगा। उधर भी देखा जाता है कि जो गुलजार दादी हैं वो कौन से सेंटर की इंचार्ज रही थी लंबे समय तक, वर्षों तक? है दिल्ली में कौन सा सेंटर है? क्या गोरदा गुड़गांव, वो तो आप ही हैं। जब बाबा ने भेजा था सेंटर संभालने के लिए तो यही पता नहीं पहला सेंटर कौन सा खुला था, कमला नगर सेंटर नाम ही है उसका, कौन सा नगर? कमला नगर सेंटर की इंचार्ज। और बचपन की कहानी बाबा ने बताई, गुलजार दादी जब बचपन था तो ब्रह्मा बाबा बहुत उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते थे, आजा बच्ची आजा आजा, आते ही नहीं थे। और बाबा का उसके प्रति लगाव शरीर छोड़ने तक बना रहा, और वो बच्ची बाबा के पास नहीं आई। बाबा ने कहा सेंटर संभालने जाओगी? तो हाँ जाऊंगी। जगदीश भाई के साथ जाओगी? तो चलेगी। कमला नगर सेंटर का वर्षों से संचालन किया, इंचार्ज रही। और जो कमला नगर सेंटर है वो पश्चिमी दिल्ली में है कि पूर्वी दिल्ली में है? कहाँ है? पश्चिमी दिल्ली में। तो भारत का कौन सा इलाका है जो पश्चिम देश में पड़ता है जाके? है है? अरे भारत का कोई इलाका है जो पश्चिमी भारत कहा जाता है? है उससे भी ज्यादा पश्चिम है कोई? बम्बई तो वहां से है जहाँ दक्षिण भारत शुरू होता है, पंजाब, पंजाब और सिंध। तो सिंधी थी गुलजार दादी। अब यहाँ भारत में चल रहा है सारा काम, क्या वो है? लास्ट धर्म सिख, कलयुग के अंत का जो बहुत पावरफुल होता है, क्या स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा पावर कौन से धर्म वालों ने दिखाई? हिंदुओं ने दिखाई, जैनियों ने दिखाई, बौद्धियों ने दिखाई, किसने दिखाई? सिख धर्म वालों ने दिखाई। पश्चिमी सभ्यता से कोई खून निकला तो वहां की कुमारी बनी थी निमित्त, बेसिक नॉलेज ऐसे ही एडवांस में, क्या छोटी बच्ची थी, क्या जो छोटी बच्ची थी वो कमला नगर सेंटर से संचालित सेंटर था सादरा, और सादरा सेंटर में वो जगदम्बा बचपन से ही जा रही थी, 8-9 साल की थी तब। वहां की बहनों ने उसका नाम रखा था, इंचार्ज बहनों ने, अंतिम बाला। क्या नाम रखा माने रुद्र माला का कैसा मणका हुआ अंतिम माला। तो अंतिम माला जो है उधर भी वो अल्लाह से धर्म की मुखिया कौन गुलजार दादी किस धर्म में पहुंचेगी जिस धर्म में जगदीश भाई पहुंचेगा उसी धर्म में जाएगी या दूसरे धर्म में जाएगी किसका संघ का रंग लगा है जगदीश भाई का लगा ऐसे ये भी है इधर भी आखिरी धर्म वंश है जहाँ से वो खून निकलता है क्या ऐसी पावरफुल है जिसके लिए बोला अव्यक्त वाणी में क्या है पंजाब कन्यादान में अव्वल नंबर गया फिर बोला सन 83 आने वाला है तो 83 में 13 होना चाहिए ना बताओ सन 83 तक 13 कोई हुआ ही नहीं कोई सरेंडर नहीं हुई क्या ब्रह्म कुमारी हाँ सरेंडर तो हुई लेकिन अम्मा के प्रति सरेंडर हुई अम्मा ब्रह्मा की बच्चियां बने बाप की कोई बच्ची अम्मा को पहचाना लेकिन बाप को कोई बच्ची ने रुद्रमाला का मणका बन करके नहीं पहचाना तो इशारा दिया कि पंजाब की धरनी राजयोग सीख करके राजा बनने में सबसे आगे गई कितनी आगे गई कि राज करेगा खालसा आज भी दुनिया में प्रसिद्ध है किसके ऊपर राज करेगा है किसके ऊपर राज करेगा अरे सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा मुरली में ही इशारा दे दिया शिव बाप आते हैं तो वर्षा देते हैं प्रजापिता को और प्रजापिता वर्षा देता है जगदम्बा को और जगदम्बा से सारे विश्व को नंबर वार वर्षा मिलता है लड़ाई लड़ी लड़ाई लड़ करके जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जगदम्बा बनी ना नहीं बनी तो ऐसे ही यहाँ भी जगदम्बा बनेगी या नहीं बनेगी जो युद्ध करेगा युद्ध करने की हिम्मत करेगा वो ही विजयी होगा राज्य करेगा कि जो हिम्मत ही नहीं करेगा आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और राजा पूछ दबा के बैठ जाए या भाग जाए तो राज करेगा जो करेगा तो भरेगा है किसको किसको जाना माउंट आबू
आखिरी में माउंट आबू में जाना है ना
आपको जाना है
नहीं बाप बोलेंगे जाना माना सब जाना है
बाबा डायरेक्शन देंगे कि माउंट आबू जाओ बेहद का माउंट आबू कौन सा है सार रूप माउंट आबू में पहले जाओ या विस्तार रूप माउंट आबू में पहले जाओ विस्तार रूप माउंट आबू में तो 500 करोड़ की मन बुद्धि रूपी आत्मा पहुंचेगी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी क्योंकि अखबार से देखेंगे टीवी में देखेंगे रेडियो में देखेंगे मोबाइल में देखेंगे बुद्धि में आकर्षण तो होगा ना तो मन बुद्धि कहाँ पहुंच जाएगी माउंट आबू लेकिन जो बीज रूप आत्मा है वो कहाँ पहले पहुंचेंगी कहाँ पहुँचेंगे? बाबा ने तो इशारा दे दिया था, क्या मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। वो मधुबन वाले चाहे बीके वाले हो, ऐसी स्थिति आने वाली है कि बीके वालों को भी अपना मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और चाहे एडवांस वाले हो, मिनी मधुबन बना के बैठे हो, उनको भी मधुबन छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। इतना कौवा रेरा मचेगा कि समाज के लोग गीता पाठशाला वालों में बंद करो ये ढकोसला, नहीं तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डर पाएंगे या नहीं डर पाएंगे? परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि मुंह का बक्का लगा लिया दुनिया, हमें भगवान मिला है, हम भगवान के बच्चे हैं, तुम शैतान के बच्चे हैं, हैं? बीस साल के बाद आ जाएगा। ऐसे पूछने से ही पता चलता है कि रोज मुरली सुनते ही नहीं, सात दिन में एक बार आते हैं कि रोज आते हैं? सात दिन में एक बार। तो मुसलमान हुए, क्रिश्चियन हुए या हिंदू हुए, क्या हुए? हिंदू हुए। अरे मुसलमान जो हैं वो जुम्मा जुम्मा जाते हैं जामा मस्जिद में, और क्रिश्चियन संडे संडे गिरजाघर में जाते हैं। तो शूटिंग कहाँ हो रही है? रिहर्सल तो यहाँ हो रही है, यहाँ रिहर्सल करेंगे तो ब्रॉडग्राम में प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ क्या बात चल रही थी? प्रश्न टूट जाता है। तो बात चल रही थी दर्पण देखने के लिए किसने कहा ये प्राणी प्राण धारण करने वाली आत्मा, प्राण होता है ना, सांस लेते हैं ना, लेते हैं छोड़ते हैं, इसे प्राणवायु कहते हैं। तो प्राण धारण करने वाली आत्मा प्राणी दर्पण देखा, बड़े से बड़ा दर्पण क्या बताया है? बाप है बड़े से बड़ा दर्पण। कौन सा बाप? लौकिक बाप होते हैं वो, तो जन्म बाई जन्म हरेक के अपने अपने हुए, देर के देर हुए। फिर बड़े बड़े बाप हुए, ग्रेट फादर, धर्म पिताएं। चेहरा तो उनका भी दर्पण जैसा दिखाई देता है, क्या ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। लेकिन बड़े से बड़ा आरसी कौन है? है बड़े से बड़ा दर्पण जल्दी भूल गए है? हाँ शिव बाबा है बड़े से बड़ा दर्पण। उस बड़े से बड़े दर्पण में, उस ज्ञान दर्पण में हर एक चाहे तो अपना चेहरा देख सकता है। बेहद के बाप ने कहा, लेकिन बेहद के दो बाप हैं, कौन से बाप ने कहा? आत्माओं के बाप ने कहा, क्या बच्चों से है? दो बाप में से कौन से बाप ने कहा? मनुष्य शक्ति के बाप ने कहा कि दर्पण ने अपना चेहरा देख ले, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, क्या निशानी देखने में आएगी है?
पुण्य करने वालों की क्या निशानी देखने में आएगी और पाप करने वालों की क्या निशानी देखने में आएगी। ब्रह्म वाक्य मुरली ने भी बता दिया है, जो रोज मुरली सुनते होंगे ध्यान से कान खोल करके उनकी बुद्धि में होगा जरूर, नहीं तो याद दिलाने से तो आ ही जाएगा।
परेशान
है, सीमत पर न चलने वाले रोगी धोगी परेशान होंगे। हाँ तो सीमत से कौन चलता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो सीमत पर चलता है, पूरी सीमत पर चलता है, हा? तो ये तो बात सच्ची है, सीमत पर न चलने वाले बीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। तो भले मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा क्यों न हो, ये भी एक पहचान है। क्या मनुष्य सृष्टि के बाप की ये पहचान है, क्या क्या होगी, बीमार दुखी रोगी परेशान रहेगी। और भी पहचान बताई, नहीं याद आ रहा है, दुखी रोगी परेशान रहेगी, वो भी बात बताई, ढेर सारी पहचान तो ढेर सारी बताई है मुरली, लेकिन हम बच्चे पूरा ध्यान नहीं दे रहे। तो बेहद के बाप ने कहा, प्राणी हे प्राण धारण करने वाली आत्मा, अपना दर्पण में देख कितने पुण्य किए हैं कितने पाप किए हैं, पुण्य आत्मा की निशानी एक मुरली में और बताई है, जो जन्म जन्मांतर के पुण्य आत्मा होंगे वो इस ब्राह्मण जीवन में निर्बंधन होंगे, कैसे होंगे निर्बंधन होंगे, उनके ऊपर परिवार के पालना का कोई बंधन नहीं होगा, पेट की पालना का कोई बंधन, धंधा दोरी का कोई बंधन नहीं होगा, और देह की परवरिश का कोई बंधन नहीं होगा, वो तो ठीक, बीमारियों का बंधन होगा या नहीं होगा, है होगा, लेकिन एक वाक्य और बोल दिया, शरीर बल कैसा भी हो, क्या शरीर बल कैसा भी हो, लीवर पूरा खराब हो, बचपन से ही खराब हो, कोई हर्ज नहीं, जिनका बचपन में लीवर खराब हो जाता है ना, तो उनकी टांगे पतली पतली हो जाती है, पेट ये बढ़ के आगे पहुंच जाता है, नहीं देखा होगा किसी को, देखना बच्चे को, कभी कभी ऐसी भी हालत हो जाती है डॉक्टरों को पास हॉस्पिटल में जमा कर दो, महीने दो महीने इलाज कर रहे, डॉक्टर कहते हैं ले जाओ ये तो मुर्दा हो गया, और बचपन से जिसका लीवर खराब हो कभी भी पेट से तंदुरुस्त होने की बात आएगी नहीं, जिंदगी भर इलाज कराता रहे पेट का वो पूरा होता ही नहीं, और लीवर जिसका खराब उसको तो सारी दुनिया भर की बीमारियां पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। लेकिन बोला शरीर बल कैसा भी हो, बल कैसा भी हो माने बीमार दुखी होगी परेशान भी हो, वो तो बताया है, क्या है भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया, माने किसने रुलाया है, बाबा ने रुलाया है, अपने शरीर में भी रुलाया हो या कोई दूसरी आत्माओं ने भी रुलाया हो, रुलाते हैं कि नहीं रुलाते, बेवफा बनते हैं कि नहीं, बेवफा बनते हैं तो आदमी रोता है कि नहीं,
मुंह क्यों बंद कर लिया? रोता है, बाप की अवज्ञा करते हैं बच्चे तो बाप अंदर अंदर रोता है कि नहीं है? माताएं कहा कि आंसुओं से रोती हैं और पुरुष मन से रोते हैं। कोई बच्चे होते हैं बड़े बेईमान होते हैं, क्या सब कुछ तेरा सब कुछ मेरा, कैसे बच्चे होते हैं बेईमान, तेरा सब कुछ मेरा लेकिन मेरे को आवाज नहीं लगाना तो बताओ बेईमान है कि ईमानदार है? है कैसे है बेईमान है तो रोएंगे ना। ये संबंधी इन संबंधों से बाप का शिष्टता जिसके साथ होगा वो रोएगा तो जरूर। तो बोला ये सब कुछ होते हुए भी शरीर भले लिंगम पुंजम हो, संबंधी भले धोखेबाज हो, बेवफा हो, अवज्ञाकारी हो, नाफरमान हो, कुछ भी हो, फिर भी शरीर भी भले रोगी हो और कैसा कैसा हो, अरे बुद्धा सुद्धा हो क्या फरक्काबाद में कभी 15-20 पत्रिकाएं निकली थी जिनमें बड़ी आध्यात्मिक विद्यालय की ग्लानी निकली और कम से कम 7-8 जो एरिया के अखबार थे उनमें भी भरपूर ग्लानी निकली। एक व्यक्ति ने लिखा ग्लानी में कि कम दिल वाला जो बाबा है उसकी तो सारी इंद्रियां सड़ी हुई हैं। अब उसने पता नहीं लगा किसने लिखा अपना नाम, उसने छापा ही नहीं तो जरूर कोई नजदीकी होगा उसे ही जाना होगा ना है? अंदर की बातें कौन जान सकता है? तो बोला ये सब कुछ बातें होते हुए भी वो बड़ा शीशा है, बड़ा आरसी है, चाहे तो कोई अपने जन्म जन्मांतर की सारी कथा कहानी उस दर्पण में देख सकता है। एक निशानी तो स्पष्ट बताई, बहुत पुण्य किए होंगे तो इस जीवन में क्या देखने में आएगा है, निर्बंधन होगा। शरीर भले बीमार रहता हो तो भी आत्मा इतनी पावरफुल होगी कि बंधन को बंधन महसूस करेगा ही। तो हे आत्माएं, हे प्राणी, प्राणी माने प्राण को धारण करने, कीड़े मकोड़े भी होते हैं सांस लेते ही नहीं है, मछली जल के अंदर रहती है, जल में तो पानी होता है, सांस लेती है कि नहीं, तो प्राणी है। कहते हैं ना आत्मा निकल गई माने प्राण निकल गई। तो बाप कहते हैं इस समय में क्योंकि एक ही बाप की सारी महिमा है, ये क्या बात कर दी है, ये क्या बोल दिया, सारी महिमा एक ही बाप की है, कौन सा एक है, है? दादा लिख रहा हाँ मनुष्य सृष्टि के बाप के माने से बाबा की कोई महिमा नहीं। अरे दो बेहद के बाप हैं कि नहीं, बेहद के बाप की कोई महिमा नहीं, जो से बाप है आत्माओं का बाप उसकी महिमा नहीं है, महिमा की बात हो रही है, पूज्य की बात नहीं हो रही। महिमा है या नहीं है, है तो, लेकिन उस निराकार की महिमा जो है वो तो विधर्मी करते हैं, बिना जाने बिना पहचाने बिना सिद्ध किए बोलते हैं ना,
अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, अरे निराकार कैसे फरमाएगा? कैसे भी है, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता, तो क्या अर्श में से आवाज आती है? हैं? अर्श की आवाज यहाँ तक आएगी? नहीं आएगी। तुम जो चिल्लाते हो अल्लाह हू अकबर, वो आवाज वहां तक जाती है? अर्श तक नहीं जाती। तो वो जानते तो नहीं है, फिर भी निराकार की महिमा महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं? अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद सूरज चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने समंदर बनाया। तो ये महिमा हुई कि नहीं? महिमा तो करते हैं। बाबा कहते हैं एक की महिमा है, वो निराकार की महिमा करते हैं। तो है क्या निराकार की महिमा? है नहीं है? निराकार की महिमा नहीं है। वो निराकार जब साकार में आता है तब ही उसकी महिमा होती है। अगर वो साकार में ना आए तो महिमा भी नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी गायन वगैरह हैं, गायन वगैरह वगैरह माने पूजन है, पूजा करते हैं, गायन करते हैं, महिमा करते हैं, जो कुछ भी है बाप के लिए है, परंतु बाप को न जानने के कारण जिसकी महिमा करते हैं, उस बाप को न जानने के कारण जिसके साथ आते हैं, क्या जिसके साथ आते हैं उसकी महिमा लगा देते हैं। समझा? किसके साथ आते हैं? अरे दूसरे धर्म वाले किसके साथ आते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के साथ आते हैं, उनकी महिमा लगा देते हैं। न जानने के कारण, लेकिन उनकी महिमा थोड़ी है, महिमा सारी एक बाप की है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसकी पहचान कौन देता है? शिव बाप देते हैं। किसको देते हैं? है? मनुष्य सृष्टि को। मनुष्य सृष्टि तो वो बात ही नहीं करता है, वो तो कहता है मुरली मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, तुम बच्चे किससे कहा है? कौन है सन्मुख? स्पेशल सन्मुख रहने वाले वो आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार ईमानदार बच्चे कौन है, जो सजाएं भी नहीं खाते, वो आठ हैं, उनके लिए बोला। तो बताया जो कुछ भी गायन पूजन यादगार है, वो बाप को न जानने के कारण जिसके साथ आते हैं उनके साथ लगा देते हैं। कौन? दूसरे दूसरे धर्म के फॉलोअर्स जिन धर्म पिताओं के साथ इस धरणी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, उन धर्म पिताओं के लिए महिमा लगा देते हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं, क्या कहा? कौन समझाते हैं? बाप बैठ करके समझाते हैं। बैठ के समझाते हैं माने? बैठ करके समझाते हैं माने खड़े होकर नहीं समझा सकते। बैठ करके समझाते हैं संगम युग में या और युग में भी? और युग में नहीं, बाप समझाते भी हैं, समझाते माने विस्तार से सुनाते हैं। एक होता है सुनाना और एक होता है समझाना। क्या करते हैं? यहाँ समझाने की बात आई, बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन सा बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप,
बैठ करके संघाती कौन सी योजना समझ नहीं। बस द्वापर में व्यास नाम किसका पड़ता है? वी माने विशेष रूप से, आस माने बैठना। वहाँ भी तो बैठ करके ही समझाते हैं, हैं? कि दौड़ के समझाते हैं, खड़े खड़े समझाते हैं। अरे व्यास गद्दी तो प्रसिद्ध है, किसकी गद्दी? व्यास गद्दी। बाप बैठ करके समझाते हैं, अभी सन्मुख समझाते हैं बच्चों को, क्या हैं? वहाँ जो भी बच्चे बैठे होते हैं, कोई जरूरी नहीं वो सन्मुख बैठे हों, और अभी अभी सन्मुख बैठकर बच्चों समझाते हैं कि हे आत्माए, अभी तुम अपनी 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 अलग अलग जांच करो। क्या जांच करो? है दर्पण में देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप किए हैं जीवन में। जो पास्ट में जीवन हुए हैं, जन्म हुए हैं, उन जन्मों में कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं देख ले। क्योंकि ये तो समझ गए हैं बच्चे कि सिर्फ एक इस जन्म को नहीं जांचना है। क्या सिर्फ इस जन्म को ही देखना है या 84 जन्मों को भी समझना है, पहचानना है, जानना है? समझ गए? क्या समझ गए? आत्मा रूपी बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा एक्टर हैं। क्या समझ गए? हम आत्मा एक्टर हैं। तो एक्टर का काम क्या है? एक्यूरेट एक्ट करना। और एक्यूरेट एक्ट कौन करेगा? जो अपने पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करेगा वो एक्यूरेट एक्ट करेगा, या रिवाइज ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं देगा, है डायरेक्टर चिल्लाता रहे याद करो अपने अपने पार्ट को, तो वो अच्छी एक्ट करेगा है? जो रिवाइज करेगा, ध्यान देगा, वो अच्छी एक्ट करेगा। तो समझाते हैं बच्चों को, हे आत्माएं, अपनी अपनी जांच करो, क्योंकि बच्चे समझ तो गए हैं कि हम आत्मा रूपी एक्टर हैं। नंबर वार अव्वल नंबर के एक्टर हैं, दो नंबर के एक्टर हैं, ये थर्ड क्लास एक्टर, फोर्थ क्लास एक्टर हैं। रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले एक्टर्स नंबर वार होते हैं ना, है? एक जैसे होते हैं क्या? हाँ, तो बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं तो लोग खुश होकर के कितना इनाम देते हैं, है? सोने के मेडल, चांदी के मेडल मिलते हैं कि नहीं? तो बताया, इस एक जन्म को नहीं जांच करना है, इस एक जन्म में हमारा कितना सुंदर पार्ट है। जैसे जगदीश भाई जांच करते रहे, कितना बढ़िया पार्ट है, कैसा हवाई जहाजों में घूमने को मिलता है, है? कैसा ब्रह्मा कुमारियों में मान मर्तबा मिलता है, है? कैसी बढ़िया सी सुंदर ब्रह्मा कुमारी, जो ब्रह्मा बाबा के नजदीक भी नहीं जाती थी और मेरे पास आ गई, है? तो इस जन्म को देखा या भविष्य जन्मों को, पास्ट जन्मों को देखा, परखा, है? बस वर्तमान जन्म को देखा। तो इस जन्म को नहीं जानना है, परंतु हम जानते हैं कि जब के हम तमो प्रधान बने हैं और हमने जाति डा के नीचे उतरे हैं, क्या और धर्म वालों ने जाति जन्म की सीढ़ियां नीचे नहीं उतरी हैं? हमने जान लिया है क्या कि हम ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे हैं और हम सूर्य वंश से जन्म लेते लेते अब नीचे उतरते उतरते सीढ़ियां पार करते करते हमने सबसे जास्ती सीढ़ियां उतरी हैं जन्मों की, या और धर्म वालों ने उतरी है? हमने जास्ती सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, तो ज्यादा पतित कौन बने? सुख भोगते भोगते इंद्रियों के ज्यादा सुखी ज्यादा पतित हम बने या दूसरे धर्म के बने? हम जाति पतित बने। तो पतित कैसे बनते हैं? है? संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करते हैं। क्या? संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करते हैं तो ज्यादा पतित बनते हैं। बताओ, संग के रंग में आकर ज्यादा पाप करने की आदत किसकी पड़ी होगी और संग के रंग में आकर कम पाप करने की आदत किसकी पड़ी होगी? कोई ऐसी भी तो आत्माएं होंगी कि संग के रंग में तो आती होंगी लेकिन हाँ लेकिन पाप ज्यादा नहीं किए। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं? तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं संगम युग में उन्होंने ज्यादा व्यभिचार किया होगा इंद्रियों का या इंद्रियों का कम व्यभिचार किया होगा? है? ज्यादा व्यभिचार किया होगा। जैसे शास्त्रों में गायन है अहिल्या का, किसका? अहि माने सर्प, लिया माने ले आई, भगवान के सामने किसको पकड़ के ले आई? जानती है ये महाकामी है, सांप जैसा है, ऐसे सांप को भी पकड़ करके खुश करके बाबा के सामने ले आती, बाबा हम ये सेवा करके लाए। तो उसका नाम क्या पड़ा? अहिल्या। पतित को सामने ले आई ना बाबा के, जब जान लिया कि ये पतित है, है? अरे कन्या माताओं को तो जल्दी समझ में आ जाता होगा कि पतित दृष्टि किसकी है और किसकी नहीं है, ज्यादा कौन समझता है, कन्या माता है या भाई लोग? कन्या माता तो फट से समझ सकती है, तो वो समझ जाती है कि ये पतित है और इसने मेरे साथ पतित पाना किया है, फिर भी उसे पकड़ के ले आई। तो बाबा क्या कहते हैं उनके लिए? मुरली ने क्या बोला है? वो क्या बन जाएगी? पत्थर बुद्धि बन जाएगी। पत्थर बुद्धि का मतलब क्या हुआ? हाँ, कोई कितना भी ज्ञान समझाने की कोशिश करे लेकिन वो पाप को पहचान ही नहीं सकती, ऐसी पत्थर बुद्धि बन जाती। ऐसे पत्थर बुद्धियों को इकट्ठा करके उस धर्म के फॉलोअर्स अपना इबादत स्थल बना देते हैं, मस्जिद। क्या बना देते हैं? मस्जिद। कैसी मस्जिद? बड़ी जिद्दी है, उसको कितना भी समझाओ मानती ही नहीं, दीवानों की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है अपने फॉलोअर्स के सामने। मानेगी? दीवार बन के खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? जो फॉलोअर्स हैं वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे? हैं? दीवार सामने आ गई तो उसका नाम क्या दिया हिंदू शास्त्रों ने? अहिल्या। जो पतितों को पकड़ करके ले आती हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं कि ये पत्थर बुद्धि बन गई, बन जाएगी, बन जाती है। तो पाप किए ना, क्या किए? पति तो बने हैं,
पाप जास्ती करते हैं और धर्मों के मुकाबले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा जन्म लेती हैं या कम जन्म लेती हैं? है? और धर्म वाले ज्यादा जन्म लेते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के मुकाबले इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा जन्म लेती हैं, ज्यादा पतित बनती हैं। तो एक जन्म को नहीं देखना, परंतु हम जानते हैं जबकि हम तमोपदान बने हैं और जास्ती नीचे गिरे हैं, जास्ती नीचे डाके उतरे हैं सीढ़ी के, 84 जन्मों की सीढ़ी के ज्यादा पतित बने हैं, तो जरूर हमने पाप जास्ती किए होंगे। ये पाप मेरे सिर पर जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, थोड़े जन्मों की बात नहीं है। क्या ये 63 जन्मों में जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हुए हैं, ये अनुभव आएगा, जान जाएंगे। ये पाप हमारे ऊपर ज्यादा चढ़े हैं ये कैसे मालूम पड़े? ये जानने की सोचने की बात है, ये सारी बातें सोचन समझने की हैं। तो देखते हैं कि हमारा योग कितना लगता है, ये भी एक पहचान। क्या जिनका बहुत योग लगता है, बड़ी बड़ी योग लग जाता है, क्या जल्दी से योग लग जाता है, पहचान बता दी। क्या एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में चाहे तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चली जाए बुद्धि, एक सेकंड में साकारी कर्म इंद्रियों से कर्म करने लग पड़े, कोई भी कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से, कोई से भी, और जरूरत पड़ जाए कर्म करते एक सेकंड में कोई ऐसा सभा का पड़ जाए कि कर्म इंद्रियों का सुख भोग छोड़ना पड़े, तो एक सेकंड में छोड़ दें और वो ईश्वरीय सेवा पहले कर लें। नहीं तो क्या होता है, जिनका लगाव है जन्म जन्मांतर का, वो ईश्वरीय सेवा वेवा सब छोड़ देंगे, पहले अभी तो भोग ले फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये देखना है कि मेरा योग कितना लगता है, किसके साथ? बाप के साथ। कौन से बाप के साथ? किसके बाप के साथ? किसकी बात हुई? कौन से दर्पण में देखना है? हैं? जो निराकार सो साकार है, ऐसे बाप के साथ मेरा योग कितना लगता है और कितनी जल्दी लगता है। जितना अच्छा योग लगेगा इतना हमारा विकर्म जरूर नाश होगा। क्या ये निशानी है कि हमारे कर्म बंधन कितने भस्म हुए? ज्यादा कर्म बंधन भस्म हुए हैं तो इससे क्या साबित होता है, क्या दिखाई देगा, क्या अनुभव आएगा? है? अच्छा योग लगेगा। कभी कभी अनुभव होता है ना कि हम चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी हमारा अच्छे से योग लगने लगता है, और कभी हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी याद ठहरती नहीं। तो ये बात ठीक है ना? क्या योग अच्छा लगने की बात ये साबित करती है क्या कि हमारे विकर्म विनाश हुए? तो ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध बात है। बाप ने कहा है अगर तुम मेरे को याद करती रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा विकर्म जरूर विनाश होगा। किसने कहा है? है? किसने कहा? बाप ने कहा है। क्या कहा है? मन मना भव। बाप ने क्या कहा?
मन मना भव दो वेद के बाप, आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप, कौन से बाप ने कहा? उसको तो कहने की बात ही नहीं, वो कैसे कहेगा? उसको तो मुख है ही नहीं। वो जब प्रवेश करता है तब ही तू कहेगा। क्या कहेगा? मन मना, मेरे मन में समझ है। उसको मन है, उसको तो मन ही नहीं है। तो कौन कहता है? वो कहता है जिसको मन है कि मेरे उस मन में समा जा, जो मन जब चाहूं एक सेकंड में उस स्टेज में, बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाऊ, ऐसे मेरे मन में समा जा। मन मना भव, तो तुम्हारा विकर्म जरूर विनाश हो जाएगा। अब ये हुई सबको अपने अंदर की बात समझाना। क्या? अपने अंदर की बात सबको समझाना। क्या अपने अंदर की बात? क्या अपने अंदर की बात? अंदर अनुभव किया होगा तभी तो समझाएंगे। अनुभव की बात जल्दी समझाएंगे आसानी से, कि अनुभव में आया नहीं तो जल्दी समझाएंगे। और समझने वाला समझेगा? अनुभव की बात जल्दी समझ में आती है। तो जिनको अनुभव है कि बुढ़ जल्दी योग लगता है, तो वो फटाक से दूसरों को भी समझाएंगे, सबको समझाएंगे। ओम शांति।